సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ
Seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Ye shlok Bhagavad ki pahle skand ke dusre adhyay ke shlok hai, 12th shlok. ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है. इसके संबंध में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े प्रवचन दिए इसके ऊपर. आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं. हमने सोचा क्योंकि भक्त लोग बहुत साल से आते रहते हैं मंदिर में, हम ऐसे विषय के ऊपर बोलेंगे. इस इट क्लियर? व्हाट क्लियर? इट्स वेरी ब्लर्ड.
हरि बोल बलराम. हरि बोल बलराम पूरे साल जाता है. शार्प करना इसको, एडजस्ट करना, बास को जीरो करो.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण.
नाउ इट्स गेटिंग बेटर. से
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
मैंने सोचा मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम.
प्रभा जी इस श्लोक के संबंध में एक प्रवचन दी है. प्रभा जी सारे प्रवचन में सिर्फ एक ही विषय के ऊपर उन्होंने जोर दिया है कि हमारे भक्तिमय जीवन में कैसे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लोभ चाहिए, वो लोभ के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. तो प्रभु ये शब्द को लिया उन्होंने इधर से, श्रद्धा धाना. ये शब्द को लेकर प्रभु जी बताते हैं किसी भी चीज करने के लिए इस दुनिया में योग्यता की जरूरत है. ये वापस एक बार, हरे कृष्ण. अरे अरे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी. अगर कुछ मशीन रिपेयर हो गया तो वो मशीन की जानकारी होना चाहिए किसी व्यक्ति को उसको रिपेयर करने के लिए, है ना. जैसे ऑटोमोबाइल है, कार है, मोटर गाड़ी है. अगर कोई मैकेनिक 20 साल 25 साल से रिपेयर करते आया है ना उस गाड़ी को, उसको इंजन ऑन करो तुरंत बोल देगा क्या प्रॉब्लम है, आवाज़ को सुनकर ही. उसको व्हीकल को टच भी करना नहीं होगा उसको, क्योंकि उसका अनुभव है, उसमें एक्सपर्ट है वो. तो इस तरह बाबा जी बताते हैं, इस तरह भगवान को देखने के लिए भी हमारे अंदर योग्यता की जरूरत है. जिस तरह एक्सपर्ट मैकेनिक गाड़ी के बारे में जानता है, इस तरह भगवान की सही जानकारी चाहिए तभी हम भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसे बताते हैं. और बताते हैं पहला योग्यता क्या है भगवान को प्राप्त करने के लिए. ही सेइंग फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू सी गॉड इज आई मस्ट सी कृष्णा, एंड सच काइंड ऑफ ईगरनेस शुड बी देयर. one must be faithful and eager to see Krishna.
बोलते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा चाहिए और भगवान को देखने के लिए आतुरता चाहिए. तो इसके इसके संबंध में प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं कि कोई चोर किसी मंदिर में भागवत कथा चल रहा था, वो जाकर बैठा, भागवत कथा सुनते सुनते उसको कृष्ण के संबंध में मालूमात हुई. कृष्ण जो है कैसे यशोदा मैया उनकी माँ उनको बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहनाती हैं, सोना चांदी इत्यादि के बारे में सुना. तो उसके मन में ऐसे एक इच्छा हुई कि मैं वृंदावन में जाकर कृष्ण से ये सब गहने चोरी कर लूँ. इस इच्छा के कारण उसको भागवत क्लास में नींद ही नहीं आया उसको, हालांकि दूसरे लोग सो गए थे, लेकिन ये बहुत आतुरता के साथ सुना ध्यान से. इसके कारण बाद में वो क्लास होने के बाद वक्ता ने पूछा किसी का कुछ प्रश्न है, तो एक ही व्यक्ति हाथ ऊपर किया, होता है चोर. तो उसने पूछा ठीक तरह से एड्रेस बताइए. क्या बोला कृष्ण किधर रहते हैं? बोला वृंदावन. बोले ठीक है, वृंदावन किधर है? मथुरा के पास में है. मथुरा किधर है? उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, और कुछ एड्रेस दे सकते हैं ठीक तरह से? बोले यमुना बहती है उधर, कदम कानन है, अनेक कुंज है, उधर गोवर्धन पर्वत है, सब नोट कर लिया. तो ये सब चीज़ों को ध्यान करते हुए वो वृंदावन की ओर चल पड़ा और उसको कृष्ण मिल ही गए उसको वृंदावन में, क्योंकि उसका एकाग्र चित्त उसका ध्यान इतना था कृष्ण में, कृष्ण तो मिल ही गए. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण के पास जाकर बोला कि इधर है मेरे पास कुछ केला है, केला खाओ. तो वो देकर कृष्ण के गहनों को चोरी करने के लिए प्रयत्न की, तो कृष्ण तो ले लिया उसके हाथ से केले को ले लिया, लेकिन वो मना किया कि मेरे गहनों को तुम ले नहीं सकते हो, मेरी मैया पूछेगी किधर किधर गए सब गहने, मुझे डांटेगी, अब लो मत ऐसे बोले कृष्ण. इतने में कृष्ण के सच्चिदानंद श्री विग्रह को छूने के कारण उसके हृदय में ऐसे अचानक एक परिवर्तन आए, तो वो भूल ही गया किस काम के लिए आया था वो, तो कृष्ण का भक्त बन गया तुरंत वो. ये कृष्ण के स्पर्श से ऐसे होता है, जैसे पूतना का उद्धार हुआ, अगासुर का उद्धार हुआ, ऐसे ही कृष्ण ने इसके मन में जो गलत भावना थी उसको खत्म कर दिया. तो प्रभा जी ये चोर की कहानी बताते हैं, कारण क्या है, उसके हृदय में कितना आकर्षण था ये बताते हैं. उसके बाद प्रभा जी बताते हैं ये सुंदर श्लोक जो रूप गोस्वामी के, स्मेराम भंगे त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी वंशी नस्ताधर किशलया उज्ज्वलां चंद्रकेण गोविंदाख्यां हरितनुमित केशितीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधुसंगे स्थिरंगः. प्रभाज बोलते हैं कि ये भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है. ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि कोई गोपी बता रही है दूसरी गोपी को कि अगर तुम अपने जीवन में भौतिक तुम्हारी अनेक भौतिक इच्छाएं उनको बनाए रखना चाहती हो तो तुम उधर मत जाओ, कदम्ब कानन में वंशी भट्ट पेड़ के नीचे एक सुंदर नीला रंग का एक लड़का खड़ा है जो मुरली बजा रहा है यमुना के तट में, और उसके ओंठ चंद्रमा की किरणों से चमकती है, और वो इतने सुंदर है कि उसको देखो मत, तुम देखोगे तो इस भौतिक दुनिया को भूल जाओगे, ऐसे बोलती है. तो इस तरह बोलने का मतलब नहीं है कि वो भगवान के पीछे मत जाओ, भगवान को भूल जाओ, ऐसा नहीं. प्रभुपाद बताते हैं इस तरह बोलने से वो बताती है कि ऐसे भगवान का स्मरण 24 घंटा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए. ऐसे राधा रानी उनके प्रार्थना में बताती है कि ये कृष्ण बहुत खतरनाक व्यक्ति है, बोलती है कारण क्या है, अगर इनसे कोई आकर्षित हो जाते हैं तो वो उनके सब इंद्रियों को और मन को चोरी कर लेता है,
क्योंकि ऐसे भक्त क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को विषय वासना में नहीं लगाते हैं लेकिन कृष्ण की सेवा में ही लगाते हैं सब इंद्रियों को, और उनके चित्त को भी चोरी कर लेता है और उनके प्राण को भी चोरी कर लेता है पूरे के पूरे। और ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदार बंधु बांधव इत्यादि लोगों से उनको डांट खाना पड़ता है, और कभी कभी वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि ये भक्ति में इतना तीव्र क्यों है ऐसे। और इस तरह एक व्यक्ति को पागल बना देता है अपनी ओर, और पूरा जीवन ऐसे व्यक्ति कृष्ण को ढूंढते हुए भटकता है इस दुनिया में। इतना ही नहीं, मरने के बाद अगले जन्म में और एक योनि में उसको जन्म मिलता है, उधर भी कृष्ण को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता है। इस तरह जब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होते भक्त छोड़ते नहीं कृष्ण को, कृष्ण के पीछे करते हैं। इस तरह कृष्ण बहुत खतरनाक है, इसलिए उनसे आकर्षित होना बहुत डेंजरस है, ऐसे बोलती है राधा रानी। इसका मतलब नहीं कि कृष्ण से आकर्षित मत हो जाओ, बोलने का मतलब क्या है, ऐसे इस दुनिया में तो सब लोग पागल है। प्रभुपाद ने लिखा हु इज क्रेजी, ऐसे एक आर्टिकल लिखा प्रभुपाद जी ने। वो बोले कि कोई कोई डिस्को डांस के लिए क्रेजी है, और कोई कोई सिनेमा देखने के लिए क्रेजी है, कोई किसी स्त्री के पीछे पुरुष के पीछे पड़े हैं उनके लिए पागल है, जैसे पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं दिल तो पागल है, ऐसे सबका दिल पागल है ऐसे इस दुनिया में। तो सब लोग किसी न किसी चीज के पीछे पागल, कोई अमेरिका जाने के लिए पागल है, कोई सिनेमा एक्टर बनने के लिए पागल है, इस तरह हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए इस दुनिया में पागल ही है। तो आत्मा जो है उसके अंदर भी पागलपना है कृष्ण के लिए, इतना ही नहीं कृष्ण भी अपने भक्तों के लिए पागल है, इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी राधा रानी को बोला गया है। क्योंकि कृष्ण जो है अपने भक्त के महान भक्ति भावना से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि एक बार ऐसे दुर्योधन ने बोला कृष्ण को, जब उसने देखा जब युद्ध शुरू ही होने वाला था कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, पहला दृष्टि देखा दुर्योधन ने, कृष्ण बैठे थे अर्जुन के रथ में, अर्जुन को पीछे बिठाते ही सामने घोड़े हांक रहे थे, जब दुर्योधन ने देखा ऐसे बोला उसने, सब लोगों ने सुना क्या बोल रहा है दुर्योधन, तो अपने मित्रों को बोला देखो ये कृष्ण कितने पागल बन गया है, मैंने जब देखा द्वारका में, ये द्वारकाधीश था ऐसे बड़े ऊंचे सिंहासन में बैठा था, सब लोग उठकर सलाम दे रहे थे उसको, सुबह सुबह सब हार पहना रहे थे, फूल की वर्षा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे इसको, उधर द्वारका के राजा है, अभी देखो ये अपने मित्र की प्रेम का पागल बनकर उनकी घोड़ा चला रहा है देखो, ऐसे बोला। जब बोला कृष्ण को सुनाई भी दिया लेकिन कृष्ण सिर्फ मुस्कुराया बस, कृष्ण ने कुछ बोला नहीं उसको, क्योंकि कृष्ण ये परवाह नहीं करते अपने भक्तों की सेवा करने करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं ऐसे। तो इस तरह की भावना जो है भगवान और भक्त उनके आपस में इतना प्रेम का घना रिश्ता है, तो एक दूसरे को प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार होते हैं, अपने मान को भी खो बैठने के लिए भी भगवान तैयार होते हैं युद्ध भूमि में, अपने हाथ में रथ अंग उठकर उनका नाम पड़ा रथांग पाणी ऐसे। तो भगवान के नाम तो बदनाम हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि भगवान ने एक शपथ ली उसको तोड़ दिया युद्ध भूमि में, लेकिन अपने भक्त भीष्म के मान सम्मान बढ़ाने के लिए और अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान अपने प्रेस्टीज को भी त्यागने के लिए तैयार हैं भगवान, इतने वो पागल हैं अपने भक्तों के पीछे। इस तरह भक्त भी भगवान के पीछे पागल हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बताते हैं के द्वारा सब भक्तों को बता रहे हैं कि इस तरह के तुम्हारे अंदर लोभ भावना होना चाहिए कृष्ण प्राप्त करने के लिए। और बताते हैं प्रभुपाद जी, द आइडिया इज इफ यू सी कृष्णा वंस देन यू विल फॉरगेट ऑल दिस नॉनसेंस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। और बताते हैं कि अगर एक बार तुमने कृष्ण को देख लिया हो भौतिक दुनिया की तृष्णा जो है वो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे चित्त में, उदाहरण देते हैं, स्वामी के साथ तो असली वरम नहीं आचे, ऐसे ध्रुव महाराज ने बोला विष्णु को, हे भगवान मैं तो आपको देख लिया उसमें संतुष्ट हो गया, अभी मुझे कुछ लोग नहीं चाहिए,
मुक्ति ही चाहिए मुझे, ऐसे वो संतुष्ट हो गए ध्रुव महाराज, ऐसे बताते हैं। और बताते हैं कि जब तक तुम भौतिक भोग करने की प्रवृत्ति को त्यागते नहीं तब तक प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हें कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो हम पूछेंगे कृष्ण प्राप्त करने के बाद हमें भौतिक वासनाएं खत्म होते हैं, नहीं तो भौतिक वासनाओं को खत्म करने के बाद हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं, पहले क्या होता है, इस तरह हमें प्रश्न उठ सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके संबंध में, मैत्री एंजॉयमेंट मीन्स मनी एंड वुमन, बताते हैं कि पैसे जो है वो तो गली गली में पड़ा है पैसे, और स्त्री बोलते हैं द वुमन आर लाइटरिंग पिक अप वन, ऐसे बताते हैं। कोई भी किसी को भी लेकर फ्रेंड बना सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना सकते हैं कोई भी, ऐसे बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं ये सब अमेरिका में इतने आसानी से मिलता है, पैसे भी स्त्री पुरुष का संग भी, लेकिन यूरोपियंस अमेरिकन हैव बिकम वैरागी एंड दे हैव बिकॉज दे हैव अटेन ज्ञानम, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए वो वैरागी बनकर इन चीजों को त्याग कर वो कृष्ण के महान भक्त बन गए हैं, ऐसे बताते हैं। तो और एक श्लोक कोट करते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, आपको एक ही दाम बनना पड़ेगा जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, ऐसे बोलकर प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भक्त रसभाजितामति क्रियतामपि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि एकल मूल्यम जन्मकोटि सुकृते न लभ्यते। ये बताते हैं कृष्ण भक्ति रसभाजितामति, इस श्लोक से प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था का नाम निकाला, हमारे संस्था का नाम क्या है, कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भक्ति रसभाजितामति ये शब्द विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने यूज किया पहले, ये कृष्ण भाविता, जिस व्यक्ति की मति कृष्ण के लीला स्फूर्ति में डूबा हुआ है हमेशा के लिए, कृष्ण भक्त रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करना ही, ऐसे व्यक्ति की संग बहुत दुर्लभ है जो कृष्ण को छोड़कर बाकी विषयों में इसका मन भटकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के संग जो है उसको प्राप्त करने के लिए कितना भी पैसा भरना हो आप भरो। लेकिन बोलते हैं कि पैसे भरने से या वो प्राप्त नहीं होता, और हमें क्या भरना पड़ेगा, ऐसे पूछते हैं, तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते, कोटान कोटि जन्मों में अगर हम कुआं को दे, लोगों को अन्नदान करे, कपड़े दे, यज्ञ दान तप इत्यादि करे, फिर भी ऐसे महान भक्त की भक्ति में प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन एक ही विषय चाहिए हमें, लौल्यम चाहिए, अगर हमारे पास थोड़ा लौल्य है उस लौल्य को लेकर ऐसे महान भक्तों की सेवा और महान भक्तों का श्रवण कथा श्रवण से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे उनके पास जो लौल्य है उसको हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बताते हैं। तो भागवत में ऐसे एक श्लोक है जो बताता है कि गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात छेद्या दया नृपा संबंधात कृष्ण स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो, पांच तरीके हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, ये पांच तरह के लोगों के बारे में बोला गया है। गोपियां जो है उनके हृदय में भगवान कृष्ण को उन्होंने एक प्रेमिका के रूप में स्वीकारा, कांता, कांता का मतलब है जिस तरह प्रेमिका और प्रेयसी का रिश्ता होता है, प्रेम होता है, इस तरह सदा भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकारा गोपियों ने, और कंस हमेशा उसके हृदय में भय था कृष्ण के लिए, इतना भय था कि कभी कभी जब अपने चेहरे को आईने में देखता था तो गर्दन के बिना उसका शरीर दिखाई देता था, उसको चेहरे चिल्ला जाता है कट गया मेरा गर्दन, ऐसे लेकिन लोग बोलते तुम्हारा गर्दन तो है, नहीं तो चिल्लाने की शक्ति किधर से है तुम्हारे पास? अभी गर्दन कटेगा तो कोई चिल्ला भी नहीं पाएगा, है ना? ऐसे उसके दो बीबी थे, दोनों जब आते थे उसको मिलने के लिए तुरंत तो चिल्लाता था, कृष्ण बलराम आ गए बोलता था ऐसे। वो दोनों पत्नी पूछती थी क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, है ना? कभी कभी उसको सपना आता था कोई मुझे एक गधे के ऊपर बिठा कर मेरे पूरा सर को मुंडन करके पूरा तेल लगाकर कुछ ऐसे बिंदी लगाकर मुझे भगा रहे हैं वो कोई, है? इस तरह के सपना अगर आता था उसको, कृष्ण के बारे में डरता था, कहीं भी देखता था वो कृष्ण को देखता था, कृष्ण आ गया अभी सो नहीं पता था, ऐसे उसको चिंता था, भय भय ऐसे था। तो इस तरह उदाहरण दिया जाता है कि ये कीड़ा जो है उसको कभी कभी एक छिद्र के अंदर रख कर कोई तितली है, तितली होता है वो आकर बार बार आकर उसको काटता है, काटता चला जाता है। तितली नहीं, उसको क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कीड़ा ही बोलते हैं उसको, भी उड़ने उड़ने वाला कीड़ा वो, मधुमक्खी है, मधुमक्खी नहीं है, बौरा, बौरा, दैट्स करेक्ट, बौरा है। बौरा क्या करते हैं, कीड़ा को एक छिद्र में रखकर कभी कभी बीच बीच में आकर ऐसे मारकर चला जाता है, तो कीड़ा हमेशा डर में रहता है, कब आने वाला है वो, आज अभी तक शाम हो गया नहीं आया अभी तक, ऐसे सोचता रहता है, पीछे आकर ठक ऐसे चलाता है, जब वो उसको मारता है चलता है चला जाता है ऐसे। इस तरह वो कीड़ा भय से वो बौरा को, बौरा के बारे में सोच सोच कर अंत में इसको भी पंखे मिल जाते हैं और ये भी उड़ जाता है बाद में, ऐसे ये उदाहरण दिया गया है भागवत में। तो इस तरह कंस भी कृष्ण को, कृष्ण के बारे में सोच सोच कर वो शुद्ध हो गया है, अभी अंत में भगवान ने उसको उद्धार कर दिया उसको भी। गोप्य कावात भयात कंसो द्वेशात छेद्या दया नृपा, जैसे शिशुपाल वो भी कृष्ण के बारे में हमेशा सोचता था, लेकिन उसके हृदय में ईर्ष्या भावना था, ईर्ष्या से वो सोचता था, हमेशा कृष्ण के विरुद्ध बोलता था। लेकिन एक सभा में कृष्ण को इतना आदर दिया गया, अग्र पूजा, अग्र पूजा के कौन अग्र पूजा के लिए लायक है, वो कृष्ण को बिठाया ऊपर, कृष्ण के पद कमलों को धोया गया, सब लोग जय जयकार करने लगे, इसका ईर्ष्या बहुत पक्का हो गया। जैसे कभी कभी हमारे शरीर में ये कोड़ा बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोड़ा, फोड़ा तो बढ़ जाता है धीरे धीरे, और डॉक्टर बोलते हैं इतना बढ़ गया उसको काटना ही पड़ेगा बोलते हैं, है ना, अभी काटना पड़ेगा, हालांकि हम उसको कटवाना नहीं चाहते, फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि इतना बढ़ गया अभी दवाई से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग दवाई लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र करके हमारे अंदर जो दुर्भावना है उनको दूर करने के लिए, लेकिन कभी गलत पावना इतना बढ़ जाता है किसी राक्षसों में, भगवान बोलते अभी हाथ से गया, अभी अभी इसको एक ही चीज है, इसको उपाय है, क्या है, इसको मेरे बाण से मारो, नहीं तो किसी अस्त्र से मारो, वो इसको शुद्ध करा सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो भगवान ऐसे अपने अस्त्र को यूज करते हैं, तो अपने चक्र को इस्तेमाल करके उन्होंने ये छेदी का राजा जो है शिशुपाल को मारा। लेकिन आपको मालूम है कितने तरह तरह के अपराधयुक्त कटु वचन बोला ये शिशुपाल ने, ऐसे ऐसे बोलते बोलते उसने भी कृष्ण के बारे में सोचा, लेकिन ईर्ष्या भावना से सोचा। और बताते हैं कि संबंधात वृष्णि जो है यदु कुल के लोग, वो लोग कृष्ण को अपने संबंधी के रूप में देखा उन्होंने, इसलिए हमेशा कृष्ण के साथ रहने की मौका मिले उनको। अगर आप किसी के साथ रहते हो, जैसे माता जो है बच्चे बच्चे के साथ रहती है, हमेशा बच्चे को गोद में लेती है, चुंबन देती है, खिलाती है, पिलाती है, नहाती है, धुलाती है, इसके कारण बच्चे स्कूल में जाने के बाद भी माँ के चित्त में बच्चा बस जाता है, हमेशा सोचती है उसके बारे में अपने मन में। इस तरह बच्चा भी अपने माँ के चेहरे को अपने मन में देख सकता है, क्योंकि जितना हम किसी भी वस्तु के साथ संग करते हैं वो हमारे मन में बस जाता है वही चीज। इसलिए हम शिव ग्रह की आराधना करते हैं, शिव ग्रह के दर्शन करते हैं, ताकि ऐसे समय आ जाए कि भगवान के सुंदर चितवन, भगवान की मुस्कान हमारे चित्त में बस जाए ताकि उसका स्मरण करते करते हम भगवान के धाम वापस लौट जाए, इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो इस तरह शिशुपाल भगवान के बारे में बोल बोल कर इस तरह स्मरण करके करके भगवान का स्मरण करते करते अंत में मारा गया भगवान के द्वारा, और वो भी उसका भी उद्धार हो गया उसका भी। और संबंध आप दृष्टि दृष्टि लोग भी भगवान को आसपास में देखते थे, उनके साथ खाते थे खेलते थे, स्मरण किया भगवान को उन्होंने। और अंत में बताते हैं नारद मुनि यूयम भक्त्या वयम विभो, वो बताते हैं कि और हम लोग, नारद मुनि अपने बारे में बोल रहे हैं, हम लोग भक्ति करके करते करते वैदिक भक्ति करके साधना भक्ति करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़े और अंत में हमें कृष्ण की ओर आकर्षण जागृत हो गया, ऐसे बताते हैं। तो नारद मुनि ने यह पांचवा चीज जो बोला उसमें हम सब लोग हैं, उसमें तो हमारा भी एक उस श्लोक में अंग है, क्योंकि हम भी भक्ति के द्वारा कृष्ण को हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बताते हैं आगे कथमोपि न वेदा स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा उनको, ठीक है ये पांच तरीके के लोगों के बारे में आपने बोला, लेकिन क्यों वेद जैसे राजा वो भी कंस के बराबर था, है ना, वो भी शिशुपाल के बराबर था, वो भी इतने गलतियां की, उसने सब लोगों को सताया, इतने ब्राह्मणों को सताया उसने, तो ऐसे वेद को सदगति क्यों प्राप्त नहीं हुई, कंस को जो प्राप्त हुआ शिशुपाल को जो प्राप्त हुआ। तो बोले कथमोपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति, ये वेन राजा के अंदर भगवान की वो किसी भी तरह का भावना नहीं था, ऐसा तो देखा जाए तो नल दमयंती वो एकदम सज्जन राजा था, नल वो सत्वगुणी राजा था, बहुत लोगों के लिए भलाई की उसने, ईमानदार था, नेक था, प्रामाणिक था, दूसरे लोगों की भलाई सोचता था, लेकिन भगवान का भक्त नहीं था वो, इसलिए उनका नाम नहीं है भागवत में, आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई जितना भी सज्जन हो इतना भी गुणवान हो अगर भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति के कुछ कुछ भी महानता शास्त्र में नहीं बताया गया है। हरा भक्त कुतो महद्गुणा, ऐसे पूछा गया है, अगर कोई हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर गुण बहुत समय टिक नहीं पाएंगे, जिस तरह ये पानी का बूंद जो है अगर वो कमल के दल के ऊपर बैठता है देखने में तो मोती के बराबर दिखता है देखने में, लेकिन वो मोती नहीं है, वो तो नीचे गिर जाता है कमल के दल के ऊपर जो बैठा हुआ पानी, लेकिन जो स्वाति बारिश की जो पानी है वो सिप्पी के अंदर जब घुस जाता है तो वो मोती बन जाता है, वही पानी का बूंद। तो पानी का बूंद कमल के दल के ऊपर टिकता नहीं लेकिन सिप्पी के अंदर वो मोती बनता है। इस तरह जो भगवान के भक्तों के साथ संग करते हैं जो सिप्पी के बराबर है तो उनको भगवान के भक्तों का संग मोती बना देता है उनको, ऐसे। इसलिए ये पांच तरीके के लोग जो है वो भगवान को सोचा, और भगवान को अब्सोल्यूट बोला गया, अब्सोल्यूट मतलब भगवान पूर्ण है, दिव्य है, सच्चिदानंद घन है, प्रेमास्पद है और शुद्ध है, परम शुद्ध है। देखिए अभी सूर्य है, सूर्य अगर निद्रा देवी के साथ नहीं तो रात्रि देवी के साथ मुलाकात करना चाहता है सूर्य क्या कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि सूर्य भूमि से 9 लाख ऐसे बोलते हैं 9 लाख मील दूर में है सूर्य, 9 लाख मील दूर में आते ही रोशनी आता है तो अंधकार भाग जाता है तुरंत, इस तरह इसलिए अंधकार हमेशा दूर में रहेगा, सूर्य आते ही भाग जाएगा वो। इस तरह गंगा जो है वो सब लोगों के पाप को अपने में ले लेती है लेकिन वो खुद पापी नहीं बनती, वो हमेशा वो पाप को खत्म कर देती है। इस तरह जिधर कृष्ण है उधर अंधकार नहीं है, उधर अज्ञानता नहीं है। इस तरह ये कृष्ण का कृष्ण के गुण बताया गया है, उसको वस्तु शक्ति बोलते हैं। अगर ये कोयला है एक बच्चा भी भूल से ये कोयला को छुए गरम गरम, नहीं तो कोई बच्चा है किसी इलेक्ट्रिक वायर को छुए करंट लग जाता है उसको, है ना, कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं देखता है देखे तो छोटा बच्चा है अभी तक स्कूल में नहीं गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम नहीं है उसको, है इसको माफी कर दे, ऐसा नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति उसको छूता है वो इलेक्ट्रिक शॉक होता है नहीं तो गर्म ही पैदा करता है ये कोयला। इस तरह भगवान अभी देखते नहीं कि कौन मेरे बारे में स्मरण कर रहे हैं, कोई भी हो व्यक्ति, पुतना हो, अगासुर हो, शिशुपाल हो, कंस हो, उनको भी भगवान शुद्ध करा देते हैं जो लोग भगवान को पकड़ते हैं। इस पुत्र ने भूल से पकड़ा था भगवान को, लेकिन भगवान उसको उसके भूल को भी पी लिए, प्राण को भी पी लिए, विष को भी पी लिए भगवान ऐसे, और उनको उद्धार करके अपने दान भेज दिया उन्होंने। लेकिन इस तरह के आकर्षण जो है कृष्ण का चिंतन जो, उसको प्रतिकूल कहा गया है। प्रतिकूल का मतलब है ये हमारे आचार्य रंग ने बोला है कि कोई भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कंस के समान है तो शिशुपाल के समान भगवान के विरुद्ध सोच कर मैं स्मरण करूंगा उनके, इसको नकारा गया है हमारे आचार्य रंग के द्वारा। लेकिन अनुकूल भक्ति चाहिए, अनुकूल तरीके से कृष्ण की ओर हमें आकर्षण चाहिए। नारद बताते युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर, हम लोग बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह का स्मरण नहीं है जितना शिशुपाल करता है कृष्ण के। यथा वैरान बंदे न, ऐसे एक श्लोक में बताते हैं कि शिशुपाल कंस इत्यादि लोग इतना अपने चित्त में कृष्ण को स्मरण किया जितना भक्त लोग कर नहीं पाते हैं, भक्त लोग सो जाते हैं क्लास में जप करते करते, जपते जपते जप ले ऐसे बोला, जपते जपते सो जाते हैं। तो भक्त लोग इतना स्मरण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे चित्त में उतना रुचि नहीं है भगवान के लिए। तो थोड़ा बहुत रुचि है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, वो लौल्यम नहीं है, वो लोभ भावना नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बताए, क्योंकि इस्कॉन के भक्तों को कभी कभी, इस्कॉन के भक्तों में प्रभुपाद के समय में भी अभी भी भक्त लोग हैं जो कभी कभी नाटक करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमारी भक्ति भावना में। तो कभी कभी वो राजा रानी की नहीं तो राधा कृष्ण की लीला है इत्यादि के बारे में बोलते बोलते कभी कभी वो बोलते हैं कि हम बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे बड़े लोगों के बीच में रोते हैं, उनके आंखों में आंसू आता है। कभी कोई 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 बोलते हैं कि हमारा रोंग खड़े हो गया है, ऐसे लोग बोलते हैं। कुछ कुछ लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में भी देखा, अपने भक्तों के साथ यात्रा में गए थे, कोई 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 माता जी कोई प्रभु जी नीचे गिर जाते हैं बेहोश होकर ऐसे कृष्ण के कीर्तन में वगैरह। प्रभुपाद जी उनका परवाह ही नहीं करते थे, उनका बोलते थे कि ये सब नाटक है ऐसे। और लोग क्यों नाटक करते हैं, ये नाटक इसलिए करते हैं दूसरों को अपने भक्ति की दिखावा करने के लिए। भगवान के भक्तों के अंदर जो भक्ति है, भक्त लोग उसको ऐसे छुपा कर रखते हैं जैसे एक पतिव्रता नारी अपने शरीर को किसी भी व्यक्ति को दूसरे पर पुरुष को दिखाती नहीं है, अपने शरीर को ढक कर रखती है। ऐसे स्त्रियों का आदत होता है, पतिव्रता नारी वो होती है। लेकिन जो पतिव्रता नारी नहीं है वो किसी भी पर पुरुष के साथ संग करती है, वो किसी को भी दिखा सकते अपने शरीर। इस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के महान भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं पब्लिक में, अपने हृदय में जो भक्ति है उसको अंदर ही अंदर रखते हैं। अगर ऐसे अंदर ही अंदर रखने वालों का भक्ति भी बहुत वर्धन होता है, उसका भी उसका भक्ति में आगे भी बढ़ते हैं बहुत आसानी से। इसलिए कभी 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 हम लोग इस लोभ के बारे में इतना सुनते हैं प्रवचनों में, और हम ऐसे स्वप्न कर लेते हैं कि मेरे अंदर भी लोभ भावना आ गया है। मुझे कभी कभी कृष्ण को देखकर, जिस तरह गोपियों ने कृष्ण को देखा नहीं तो गोपों ने देखा, इस तरह मैं भी देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे लोग सोचते हैं। इस तरह हमें ये लोभ के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, इसका हमारे अंदर कुछ गलत फहमी नहीं होना चाहिए। और दूसरे तरीके के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये देखो सहज मत बनो, इसलिए तुम बेसिक फिलोसफी बताओ बस, देता दे कौमार जगरम जरा, आत्मा के बारे में बोलो बस। ये भौतिक दुनिया में जब हम रहते हैं इतने तरह तरह के हमारे हृदय में गंदगी है, शरीर है, काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि, इसको त्यागना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसके बारे में जानो समझो, बेसिक फिलोसफी सीखो बस, छोटे किताब पढ़ो प्रभुपाद जी की बस, और कुछ बड़े बड़े विषयों के बारे में बात मत करो, इस तरह कुछ लोग बोलते हैं। इसमें समस्या क्या है, अगर हम इस तरह बेसिक फिलॉसफी सुनते आए हैं तो कभी कभी हमें बोर लगता है, मन सोचता है कि अरे क्या बहुत बार सुन लिया, हमें मालूम है कि आत्मा ड्राइवर के बराबर है और शरीर गाड़ी है, कितने बार सुन लिया हमने करोड़ों बार, आगे बोलो आगे क्या है, ऐसे अच्छा होता है, हमें रुचि जागृत नहीं होता है मन में। तो ऐसे लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कभी वृंदावन के वजवासियों की नाचना गाना देखते हैं, अपने हृदय में भी इच्छा होता है कि हम भी और जाने भगवान के बारे में। तो इसलिए लोग के संबंध में सही ढंग से समझना बहुत आवश्यक है। देखिए लोभ का डेफिनेशन ऐसा है, ग्रीड फॉर कृष्णा इज अ स्टेट वेयर आवर सोल एंड ओवरवेलमिंग डिजायर इज टू प्लीज कृष्णा इन अ पर्टिकुलर वे। भक्त साहब सिंधु ने इसके बारे में अच्छी तरह वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने। क्या है लोभ का मतलब है, सोल डिजायर का मतलब है आपके हृदय में एक ही इच्छा है, क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना। और ओवरवेलमिंग डिजायर उसका मतलब है ये उमड़ रहा है आपके हृदय में ये कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा। तो इसी समय में बोल देता हूं आपको, ये इस तरह का लोभ कब पैदा होता है, आदर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा ये स्टेज होने के बाद ही इस तरह का लोभ पैदा होता है। निष्ठा के बाद क्या आता है, निष्ठा के बाद रुचि, वो रुचि जो है उस समय इस तरह का लोभ प्राप्त होता है व्यक्ति को। उसका मतलब है जब तक हमारे अंदर अनर्थ है हम समझ सकते हैं कि अभी तक हम राधानंद भक्ति के लिए हम तैयार नहीं है, हम इस तरह समझ सकते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति कुछ कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत लंबा समय हो जाता है, कभी कभी लाखों जन्म भी लग सकते हैं, नहीं तो एक व्यक्ति एक ही जन्म में भी अपने अनर्थों को अनर्थों से निवारण पा सकता है। एक हर एक व्यक्ति की तीव्रता के ऊपर है और किस तरह वो अपने भक्तिमय जीवन को बिताते हैं, भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके हर एक व्यक्ति के सिंसरिटी के ऊपर है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। नोबल स्टेट वेयर अवर सोल एंड ओवरवेलमिंग डिजायर इज टू प्लीज कृष्णा इन अ पर्टिकुलर वे। एज लॉन्ग एज द पर्टिकुलर वे का मतलब क्या है, राधा रानी की सखियां बनकर मंदिरियां बनकर माधुरी भक्ति में सेवा करने की इच्छा एक व्यक्ति के हृदय में पैदा होता है, नहीं तो श्रीदामा सुदामा मधुमंगल ऐसे किसी गोप बालक के बारे में वर्णन पढ़ते समय मन में एक लोभ इच्छा होता है, ये लोभ पैदा होता है कि मुझे भी ऐसे गोप बालक बनकर उनकी सेवा करे। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा, हे भगवान कब ऐसे समय आएगा कि मैं वृंदावन के जो बड़े पास्चर्स वृंदावन खेती नहीं है मैदान, वृंदावन के मैदान में जिधर घास फूस खाने के लिए गाय चराते हैं, तो उधर कब ऐसे समय आएगा मैं कृष्ण के स्मरण में कृष्ण के साथ मैं ऐसे खेलूंगा और लोट पटूंगा भूमि में, ऐसे प्रभुपाद जी एक गीत में गाते हैं ऐसे। और बताते हैं उस गीत में आज सुबह कृष्ण का स्मरण आया, कृष्ण का स्मरण इतने दिव्य रूप से आया मेरे मन में, मैं सारे दुनिया को भूल गया, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। ऐसे भक्त राधानंद स्तर में है जो कृष्ण के कुछ खास मित्र नहीं तो खास भक्त नहीं तो यशोदा मैया की जो मातृ प्रेम जो है कृष्ण की ओर इसका स्मरण कर सकते हैं सदा नित्य निरंतर, बाकी दूसरी इच्छा नहीं है उनके मन में, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर वे। As long as there is some other desire in the heart, the required intensity cannot manifest. जब तक हमारे मन में बाकी दूसरे इच्छाएं होते हैं तभी हमारे इस तरह की कृष्ण के आकर्षण जो है उसमें इंटेंसिटी नहीं है, तीव्रता नहीं है, ऐसे बताते हैं। जैसे कभी कभी ये गन पिस्तौल होता है उसमें बुलेट रखकर आप मारते हैं ऐसा करता है, कुछ आवाज नहीं है, अगर असली ये बुलेट लगाए ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा है ना। इस तरह कभी कभी हम दिवाली के समय हम पटाखे चलाते हैं ना, अगर वो पानी में भीग गया तो उसको लगा ऐसा आता है लगे आप, इस तरह हमारे भक्ति भी कभी कभी ऐसा होता है कृपा इसे उसमें शक्ति नहीं है उसमें है, ऐसे बताते हैं। इंटेंसिटी नहीं है भक्ति में, तीव्रता नहीं है। और तीव्रता क्यों कम होता है वो कारण भी बताते हैं। कारण क्या है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि कभी कभी लोग गांव में क्या करते हैं, लकड़ियों को काट कर अपने घर के पीछे डालकर रखते हैं, लेकिन बारिश आ जाता है तो बिक जाते हैं सब, और बिकने के बाद उसको सुखाने के लिए ट्राई करो और कभी एक फर्नेस के अंदर डालो तो उसमें धुआं निकलता है, वो धुआं निकलने से आंख हमारे आंख जलते हैं, नाक के अंदर चला जाता है। इस तरह भक्ति प्रभु जी बोलते थे डोंट वेट योर कॉन्शियसनेस, अब आपकी चेतना को भीगो मत, भिगाओ मत पानी में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैसे हम हमारे चेतना को भिगा सकते हैं, जब हम इंद्रिय तृप्ति को मिलाते हैं भक्ति में। इसलिए बताते हैं चंद्र बलराम जी, नहीं तो हमारे गुरु जो बलराम जी के नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं हम, खाब उनके कृपा मेरे जीवन में आएगा। आर कवि निताय चंद्र करुणा हो दे संसार वासना मोरा कवि तुच्छ हो गए, ये संसार वासना के आकर्षण जो है ये मेरे सारे हृदय को वो निगल रहा है हाथ के बराबर। देखिए वैसे कभी कभी क्या होता है, एक मैच स्टिक है, अगर एक मैच स्टिक को लेकर एक पेट्रोल में डालो ऐसे जलता है ना, तो अंदर एक बड़ा पेट्रोल है, तो हर एक हमारे पांच इंद्रिय जो होते हैं उनसे हम बहुत ही पदार्थों की ओर हम आकर्षित होकर उनको देखते हैं, तो वो एक मैच स्टिक डालने के बाद अगर अंदर डालो ऐसे जलता है अंदर, ऐसे विषय वासना जलाता है हर एक जीव को अपने हृदय में। संदह्यमाना सर्वांग येषां विद्वहनादिना, ऐसे बताते हैं कपिल अपने माँ देवती को, सब इंद्रिय मन जल रहे हैं जीवों के, क्योंकि भौतिक तृष्णा है उनके हृदय में। चलिए बता रहे हैं कि आपकी कृपा आएगा तो संसार वासना मरा कभी तुच्छ है, कब ये संसार वासना तुच्छ हो जाएंगे मेरे मन में, तभी क्या होगा विषय छाड़िया कभी, तभी मैं विषय वासनाओं को छोड़ दूंगा। जब उनको छोड़ूंगा तभी क्या होगा, हेरी वो वृंदावन, तभी मैं वृंदावन को देख पाऊंगा, तभी मेरा तीव्रता भी बहुत बढ़ जाएगा भक्ति में। वो कैसे सूखा हुआ जो लकड़ी होता है वो अच्छी तरह जलेगा, पूरा जलता हो उसमें धुआं नहीं निकलता है। तो हमारे जीवन में भी भक्तिमय जीवन में अगर हम ढीले पड़ते हैं, ढीला पड़ने की आदत जो है उसको कैसे हम छोड़े, तो इंद्रिय तृप्ति को बंद करना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे सन ग्रेटिफिकेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट गो, सन ग्रेटिफिकेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस गो हेल्प टुगेदर, ऐसे बोले वो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये लोग कैसे उत्पन्न होता है एक भक्त के जीवन में, इसके संबंध में भक्ति राम सिंह बताते हैं कृष्ण तद भक्त कारण लाभ हेतु का, कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्र लाभिक हेतु का। वो बताते हैं भगवान कृष्ण से नहीं तो उनके भक्तों के करुणा से मात्र लाभिक हेतु का ये लोभ उत्पन्न होता है, ऐसे बताते हैं। तो आप देखेंगे जो लोगों ने कृष्ण की संग की है सीधा, नहीं तो कृष्ण के भक्तों का संग की है, उन वो ही लोगों के हृदय में ये लोभ उत्पन्न हुआ है। इसलिए बताते हैं प्रभुपाद जी जो लोग इस दुनिया में जन्मे हैं अगर कृष्ण भक्ति की परम चरम सेवा को भी प्राप्त कर ले फिर भी उनको और एक जन्म लेना होगा उनको, ऐसे बताते हैं किधर ये भव्य वृंदावन में जिधर उनको ये गोपी के योनि से हमें जन्म लेना पड़ेगा और लेकर कृष्ण की लीला में भाग लेकर कृष्ण के साथ संग करके हम पूर्ण तरीके से शुद्ध होकर हम उसके बाद हम भगवत धाम लौटेंगे। एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जो पुनः उनको एक वृंदावन में भी जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर से डायरेक्टली बैक टू गॉडहेड जाएंगे। वो कौन है? प्रभुपाद बोले पुजारी, जो पुजारी सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, कृष्ण को सजाते हैं, कृष्ण को आराधना करते हैं, कृष्ण के निकट रहते हैं, वो लोग इतने उनके चित्त में कृष्ण बस जाते हैं, उनको वापस एक बौम वृंदावन में और एक बार जन्म लेने की जरूरत नहीं, उनको वो सीधा भगवत धाम लौटते हैं। तो जो ब्राह्मण दीक्षा लिया शायद उनको भगवान की आराधना करने की इच्छा होगी इसको सुनकर, है ना। तो ऐसा बताते हैं कृष्ण का भक्त कारुण्य, तो किसी भक्त के करुणा के पात्र हमें बनना पड़ेगा, तभी हमारे हृदय में हमें लोभ प्राप्त होगा, ऐसे बताते हैं। अगर कोई कृष्ण के महान भक्त हैं जिनके अंदर लोभ है ऑलरेडी, अगर वो लोग हमारी ओर देखकर सोचते हैं कि कितना अच्छा भक्त है, भगवान के लिए सेवा किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ जिससे, इस तरह वो सोचते हैं, तुरंत हमारे हृदय में वो लोभ शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत लोग, तो उसका हमें आगे उसका वर्धन कराना पड़ेगा, ऐसे बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोपियों के बीच में श्रुतिचारी गोपियां थी, जो श्रुति है ये श्रुतियां इच्छा की हम भी भगवान की लीला में भाग ले, इसलिए गोपी के रूप में आए। और दंडकारण्य ने जंगल में जो मुनियां थे, जब सीता राम की आदान प्रदान को देखा उन्होंने, माधुरी उनके बीच में जो माधुरी प्रेम था राधा ये सीता और राम के बीच में, तो उसको देखकर उनके हृदय में इच्छा हुई कि हम भी भगवान की पत्नी बनना चाहते हैं, तो वो मुनिचारी गोपी बने। तो मुनिचारी गोपी, श्रुतिचारी गोपी, देवकन्या गोपी, ये सब लोग भगवत धाम से नहीं है, ये सब गोपियां इसी दुनिया से है। इसलिए ये गोपियों को कैसे लोभ प्राप्त हुआ, वो वृंदावन के दूसरे गोपियों के साथ संग करके उनको लोभ प्राप्त हुआ, कृष्ण के साथ भी रास नृत्य में नाच कर उनको लोभ प्राप्त हो गया उनको, ऐसे आगे बताते हैं। लक्षण क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं कि किसी के हृदय में ये लोभ भावना पैदा हो चुका है। न अत्र शास्त्र न युक्तिं च कल लोभोत्पत्ति लक्षणम्, ये बताते हैं कि ये राग भक्ति जो है, रागानुग भक्ति है, ये शास्त्र जब पहले पढ़ता है व्यक्ति, शास्त्रों को पढ़कर एक सर पर आता है, जब वो कृष्ण लीलाओं को सुनते समय उसके हृदय में अचानक ऐसे एक एक तरह का प्रेम जागृत होता है उसके हृदय में, जैसे इस दुनिया में लोग क्या बोलते हैं उसको, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं उसको। कोई स्त्री पुरुष को देखती है, नहीं तो पुरुष स्त्री को देखता है, तो उनके हृदय में एक तरह का आकर्षण जागृत हो जाता है। हर एक पुरुष अनेक स्त्रियों को देखता है, हर एक स्त्री अनेक पुरुषों को देखती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को देखने से क्या होता है, उनके हृदय में एक तरह का, कभी कभी बोलते हैं किसी दूसरे को, कभी कभी बोलते भी नहीं है, अपने पास में रखते हैं। तो इस तरह भगवान की कथा सुनते समय अचानक भगवान के लीला में आकर्षण होता है, वो लीला स्फूर्ति होता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति को भगवान के बाल्य लीला, किसी व्यक्ति को भगवान के कौमार लीला, भगवान के पौवर्ण लीला जो अपने मित्रों के साथ, तो भगवान की कैशोर लीला जो गोपियों के साथ, ये लीलाओं का सुनते समय ही उत्पन्न होता है। न अत्र शास्त्र बोलते हैं, ये शास्त्र से भी परे है, ये याद रहे। न युक्तिं च मतलब लॉजिक, इसके लिए कुछ लॉजिक नहीं है, और ये शास्त्र पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत लॉजिकली हम समझ सकते हैं शास्त्र, लेकिन ये अपने आप ही जागृत होता है हृदय में, बताते हैं। कल लोभोत्पत्ति लक्षण, ये लोभोत्पत्ति का लक्षण है, ऐसे बताते हैं। लेकिन बताते हैं कि ये कब पैदा होगा, ऐसे लोग अनंत निवृत्ति के बाद, ऐसे बताते हैं रूप गोस्वामी, पूर्ण अनंत निवृत्ति होने के बाद ही। तो हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, अभी भी तरह तरह के विविध इच्छाएं हैं मन में, स्थूल इच्छाएं हैं, सूक्ष्म इच्छाएं हैं। एक बार एक भक्त बता रहे थे ये श्लोक के संबंध में, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन तविपश्चितः श्लोक बोलकर एक आए थे प्रगोष बम्बई में, तो बता रहे थे हमारे ब्रह्मचार्य क्लास में, बोले कि देखिए कुछ लोग हैं वो वैदिक मंत्रों को पढ़कर वो आकर्षित हो जाते हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो इच्छा करते हैं स्वर्ग में जाकर नंदन ये जो कानन है नंद कानन उधर जाकर वो ऐश्वर्य में जीना चाहते हैं, अप्सराओं के नृत्य को देखना चाहते हैं, सोमरस पीना चाहते हैं, इस तरह भोग की जीवन जो है स्वर्गलोक में वो जीना चाहते हैं, तरह तरह के आकर्षण है। तो एक ब्रह्मचारी ने पूछा उनको, प्रभु जी हमारे मन में ऐसे कुछ आकर्षण नहीं है स्वर्ग वगैरह जाने के लिए। तो वो प्रभु जी बोले कि आप जब सड़क में जाते हो, आप बिल बोर्ड देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग कार के लिए, बंगलों के लिए, ये कर दो वो कर दो, उसको देखकर आकर्षण होता है कि नहीं? अनेक लोगों में आकर्षण होता है। वो बोले वो एक ही आकर्षण है, चाहे स्वर्गलोक का हो इस भूमि का हो। हमारे मन में आप देख सकते हैं धनम जनम सुंदरम कविताम, इन चीजों के ऊपर जो आकर्षण है वो भौतिक आकर्षण बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य, ये भौतिक पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उनकी ओर आकर्षण नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज के संबंध में एक श्लोक है, तो बताते हैं कि वो अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने मिनिस्टर लोग, अपने हाथी घोड़े रथ राज्य और इतने प्रेस्टीज, इतने मान सम्मान, इसके बीच में रहते हुए भी वो उन चीजों से थोड़ा भी तनिक भी वो आसक्त नहीं थे, लेकिन उनके चित्त पूर्ण तरीके से कृष्ण में आसक्त था, ऐसे बताते हैं। इस तरह का आसक्ति जब उत्पन्न होता है, अनंतवृत्ति हो जाता है, अनंतवृत्ति होने के बाद रुचि पैदा होता है, ऐसे बताते हैं। देखिए प्रभुपाद जी अपने किताबों को एक अलग ही ढंग से उन्होंने प्रदर्शित किया है, क्योंकि हमारे भारत के अनेक वैष्णव लोगों का प्रवचन नहीं तो उनका लेख सब संस्कृत में है, हम समझ भी नहीं सकते हैं। अगर इंग्लिश में भी अनुवाद हो तो अनुवाद भी बहुत टेक्निकल है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और अगर कोई पढ़े हमारे वैष्णव ग्रंथों को, खास करके गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को पढ़े, तो वो कभी कभी कृष्ण गोपियाँ इनके रास नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ने से उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन वासना उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे अंदर वासना है। और हम क्या करते हैं, खुद को कृष्ण के भूमिका में लेकर हम सोचते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, इसके कारण हमारे अंदर वासना उत्पन्न हो सकते हैं इसे। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने किताबों को जो जो दिया है इसके संबंध में महानिधि महाराज बहुत अच्छी तरह बताते हैं। वो बोलते हैं कि प्रभुपाद इस भगवद गीता जो प्रभुपाद ने लिखा भगवद गीता, वो अमेरिका में पहुंचने के पहले अनेक भगवद गीता पहुंच चुके थे उधर सैकड़ों साल, लेकिन उन भगवद गीता पढ़ने के बाद कोई भी भक्त नहीं बना अमेरिका में। लेकिन प्रभुपाद जी जब भगवद गीता पहुंचा उधर, हजारों भक्त बन गए एक दो साल के अंदर सारे दुनिया में। तो ये हृदय का परिवर्तन हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की किताबों से। और बताते हैं कि प्रभुपाद जी प्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स फिलोसफी इन अ इजी टू अंडरस्टैंड वे, वो बहुत जटिल दर्शन को भी प्रभुपाद जी बहुत सरल तरीके से समझाते हैं अपनी किताबों में। And he explains confidential pastimes in an innocent way. बहुत गहरे लीलाओं को भी वो सरल तरीके से समझाते हैं अपने कृष्णा बुक में। First, Prabhupada gives foundational knowledge for the first-time readers, while simultaneously presenting deeper understanding for more qualified devotees. दो श्रेणी के भक्त हैं, एक है नवसिखिया भक्त है और दूसरे प्रगति खुए भक्त हैं, प्रगतिशील भक्त हैं। दोनों के लिए प्रभुपाद की किताबों में विषय है पढ़ने के लिए, दोनों के लिए है। नए नए लोगों के लिए भी सरल भाषा में है और बहुत साल भक्ति करने वाले लोगों के लिए गहरे तरीके से दर्शन सिखाया है प्रभुपाद जी ने। तो अगर प्रभुपाद की किताबों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी भी वृंदावन के बाबा जी के पास जाकर सिद्ध देह की संबंध में पूछताछ करेगा, जिज्ञासा करेगा, नहीं तो अगर कोई तरह तरह के विविध किताबों को दूसरे संस्थाओं के गौरव, हरे कृष्ण, तो ऐसी किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति सहज्य बन सकता है। अभी सहज्य का मतलब क्या है, जो व्यक्ति भक्ति को सहज लेता है सहज तरीके से, उसका मतलब क्या है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि देखो मैं भी चैतन्य महाप्रभु के बराबर नाच रहा हूँ, ऐसे हमारे आंखों में भी आंसू आता है, अभी कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गया, ऐसे अगर लोग बोलते हैं, लेकिन उनका कुछ भौतिक नुकसान होता है उसके लिए भी उनकी आंखों में आंसू आता है। अगर कभी कभी वो क्रोधावेश में आ जाते हैं, कामावेश में आ जाते हैं, ये सब अनर्थ है। जब तक ये अनर्थ है हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? अनर्थ का निवृत्ति करना चाहिए पहले, उसके बाद निष्ठा भक्ति में आएंगे। जब निष्ठा भक्ति में पहुंचेंगे उसमें स्थैर्यता आता है। स्थैर्य का मतलब है स्थिरता। भक्ति में ऐसी स्थिरता आता है जैसे एक पौधा होता है, बहुत कोमल होता है शुरुआत में। हमारे भक्ति की बीज जो है गुरु देते हैं, उसको बो कर हम पानी सींचते हैं। पानी का मतलब क्या है? श्रवण और कीर्तन का जल। सींच रहे से वो बढ़ता है। वो बढ़ने के बाद कभी अगर कोई बकरा कर उसको खाता है तो आगे बढ़ता ही नहीं है वो। इसलिए हमें एक कुंपन लगाना होता है उसको। और कुंपन लगाने से हाथी और बकरा वगैरह आकर नहीं खाएंगे उसको। इसलिए हम भी कुंपन लगाते हैं। क्या है? वैष्णव अपराध से बचना, अपराध भावना से बचना और चार नियमों को पालन करना, ये सब करते हैं। और वो जब पौधा बढ़ता है धीरे 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 आगे बढ़कर वो ब्रह्म ज्योति को भी पार करके भगवान के धाम में प्रवेश होने के बाद तभी कृष्ण प्रेम का फल पैदा करता है उस समय। इसलिए हमें जब हमारा भक्ति कोमल है कभी कभी उसको कोई उखाड़ भी सकते हैं ये कोमल पौधे को। लेकिन अगर कोई पौधा जो पहले पहले कोमल है लेकिन धीरे धीरे उसके मूल जड़ जो है नीचे भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो धीरे धीरे इतना वो स्थिर बन जाता है। तो बाद में जैसे आप देखते हैं कभी कभी बरगद का पेड़ होता है कोई हिला भी नहीं सकता उसको, इतना स्ट्रांग बन जाता है। उसको बोलते हैं निष्ठा भक्ति। ऐसे निष्ठा भक्ति के स्तर पर हम जब आते हैं तभी स्वाभाविक रूप से राज भक्ति हमारे हृदय में उसका उदय होगा और अनंत सब भाग जाएंगे। जैसे हम बताते हैं प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश हो जाता। अविद्या का मतलब अनर्थ है, सब अनर्थ है, हमें तो सब मर मिटना चाहिए और प्रेम भक्ति का उदय होता है। और उस समय तक हम क्या करते हैं देखिए, ये प्रेम भक्ति यहाँ होते जो बोला जाता है उस समय तक हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं प्रामाणिकता से, क्योंकि हमारे अंदर उतना रुचि पैदा नहीं हुआ है अभी तक। कृष्ण के लिए स्वाभाविक रुचि पैदा नहीं हुआ है, इसलिए हमें कभी सालों साल हमें ईमानदारी से गुरु के दिए हुए विधियों को, आदेशों को, उपदेशों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। कभी भी लोग थक जाते हैं, बोलते क्या प्रभु जी अभी 4 साल हो गए अभी तक कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ, हमारे हृदय में आंखों में आंसू नहीं आता है, रोम खड़े नहीं होते हैं, हम प्रेम हरि नाम जप तो करते हैं उसमें रुचि नहीं आता है, बहुत कठिन चलता है, अभी 4 साल हो गया अभी कब होगा, इस तरह लोग बोलते हैं। इसलिए हमारे अंदर वैष्णव के ऊपर, गुरु के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर इतना विश्वास बैठना चाहिए कि आजीवन हम इस तरह के वैधी भक्ति करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। भक्तों के बीच में रहना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है और भगवान की भक्ति करते हुए दिस इज सेफेस्ट पोजिशन इन द होल क्रिएशन। सबसे सुरक्षित अवस्था है भक्तों के संग में रहना और सदगुरु प्राप्त करना और शास्त्रों को पढ़ना, इसमें आनंद में रहना चाहिए। इसलिए वो श्लोक में बोलते हैं आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजन श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करुआस राम संकीर्तन करु मारे पम दास। क्यों बोलते हैं आनंद बोलो हरि? कभी कभी आनंद को खो देते हैं भक्त क्योंकि वो कभी थक जाते हैं भक्ति में, इसलिए बोलते हैं कि अरे भक्ति में थक मत जाओ, कभी इंद्र तृप्ति से थक जाओ, ये भौतिक दुनिया की इंद्र तृप्ति जो है उससे थक जाओ। एक प्रश्न बताते हैं कामादि नाम कठिन कठिदा पालिता दुर्निवेशा त्रयी न कृपा न करुणा उपशांति, ऐसे बताते हैं। हे भगवान, इस दुनिया के भौतिक प्रलोभन मुझे इतने आकर्षित करके मेरे इंद्रियों को धोखा दे दिया है और मेरे इंद्रिय भटक गए हैं भौतिक दुनिया के प्रलोभनों के पीछे, इन तृष्णाओं के पीछे। मैं इतना मूर्ख बन गया, बेवकूफ बन गया, इतना लाख बार बार खाने के बावजूद भी मैं जागृत नहीं हो उठा, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं जो होते हैं उनको मैं दंडक प्रणाम करके बोला कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो बोलते हैं हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी तक हम तृप्त नहीं है ना कृपा। और वो मैंने बोला कि तुम तृप्त नहीं हो फिर भी छोड़ो हमें, वो बोलते हैं हम करुणा नहीं दिखाएंगे, न करुणा बताते हैं, ना कृपा ना करुणा ना उपशांति, हर वो शांति भी नहीं होते हैं। इसलिए बोलते हैं हे भगवान, हे भौतिक प्रलोभन से मुझे बचाओ और आपके पदकमलों में मुझे बांध दो कि हमेशा मैं आपके आश्रम में रहूंगा, ऐसे प्रार्थना करते हैं। इस तरह है, हमें आनंद निवृत्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तभी प्रेमा भक्ति जागृत होता है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक दुनिया से थक जाता है, अरे बार बार क्या वही चीज करते आए हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग टोटल बोलते हैं ना, हाई योनि में काकरोच के योनि में भी वही है, बिल्ली के योनि में वही है, कुत्ते के योनि में वही है, मनुष्य योनि में वही है, दूसरा कुछ नहीं है, वर्ल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, पुनः पुनः चर्विता चर्वनाराम। जैसे बच्चे कभी कभी च्युइंग गम खाते हैं, क्लास में टीचर आ जाती है, उसको निकाल कर बेंच के नीचे रख देते हैं और टीचर जाने के बाद निकाल कर खाते रहते हैं। ऐसे हम भी लोग क्या करते हैं, हर जन्म में वही चीज करते आए हैं, थक जाना चाहिए भौतिक दुनिया को आदमी, तो वो थकने के बाद क्या होगा, भक्ति में रुचि आएगा, भक्ति के नवविधा भक्ति में रुचि आएगा। ऐसा नहीं कि घर परिवार पुत्र सब छोड़कर हिमालय में जाओ, ऐसी जरूरत नहीं है। अम्बरीश महाराज अपने देवी बच्चों के साथ ही रहे, लेकिन आसक्ति भी भौतिक आसक्ति को त्याग कर भक्ति में डूबे रहे। उनके पत्नी के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बोला गया है कि तुल्यशीलया, वो अम्बरीश महाराज की बीवी का भी भक्ति उनके ही बराबर था, उनके अंदर जितना भक्ति भावना था उतना ही बराबर था उनके भक्ति भावना, ऐसे बताया गया है। क्योंकि अगर पति पत्नी बच्चे भक्ति में डूबे रहते हैं, उनका घर वृंदावन बन जाता है, आनंद में डूबे रहते हैं, तो आस पास के पड़ोस के लोग सोचते हैं कि तीसरा चुंबक इसको आकर्षित करता है, लोहे को, इस तरह इतने आस पास के लोगों को वो लोग आकर्षित कर लेते हैं, तो लोग आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, भजन में भाग लेने के लिए, कीर्तन में भाग लेने के लिए, इस तरह। तो इस तरह बताते हैं कि प्रेमा भक्ति धीरे धीरे ऐसे जागृत होगा, लेकिन भक्त को भौतिक जीवन से तकना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में हमेशा उत्साही रहना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य ऐसे बताते हैं। और बताते हैं कि तीन चीज करने से हमारा शुद्धिकरण जल्दी होगा, ऐसे बोलते हैं, जल्दी नहीं होगा बोलते हैं, ग्रेजुअली होगा बोलते हैं, और ग्रेजुअली प्यूरिफाई निस्वार्थ भावना से भगवान और भक्तों की सेवा करना, निस्वार्थ भावना से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखिए हम भक्ति में सेवा करते हैं, लेकिन इतने तरह तरह की इच्छाएं हैं हमारे मन में, कभी कभी कोई बोलते हैं कि प्रभु जी हमको भी स्टेज में एक मौका दे दो, ऐसे कोई कोई बोलते हैं हमें प्रभात की आरती हम करने के लिए दो मौका दो, प्रभात की गार्लैंड करने दो, कोई कोई मंदिर में बोलते हैं लोग आरती का लाभ मुझे पहले देना चाहिए, ऐसे कैसे किसी और को दे दिया, जूनियर को, वो मेरे से दो महीना बाद आया हो भक्ति में, मैं 1996 में आया हो, 1997 फरवरी में आया हो, दो महीने लेट आया, उसको पहले कैसे आरती दिया तुमने, इस तरह लोग कभी कभी क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं लोग। एक्चुअली आरती लाम का मतलब क्या है, आरती में विक, व्हाट इज अ विक, बाकी बाकी वो जो बाकी होता है वो हमारे अहंकार से तुलना किया गया है, हमारे अहंकार जो है और उसमें घी जो होता है ना घी, वो हमारे गलत अहंकार है, उसको बोलते हैं ना फाल्सिगो बोलते हैं, तो घी में उसको डुबा कर भगवान के सामने रखकर जब हम जलाते हैं, क्या वो पूरा बाती जब जलता है, हम भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान मैं अपने नित्य अहंकार को त्याग कर मैं आपकी शरण आ रहा हूँ, वो जलाने का मतलब है। इसका मतलब जब वो आता है हमारे पास, वो दिया आता है, उसको हाथ लगाकर जब हम आंखों में रखते हैं, इसका मतलब क्या है, हे भगवान मैं अभी अंधा हूँ क्योंकि मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ, इसलिए दिया को मैं जला दिया आपके आपके लिए, मैं अहंकार को जला दिया, इसलिए इसको छूकर मेरे आंखों में रखने से मेरे आंख दिव्य आंख बन जाएंगी, ज्ञान अंजन शलाकया है ना, ऐसे चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से बोलते, मेरा दिव्य चक्षु मिलेगा मुझे, इस तरह मिलने से मैं आपको देख पाऊंगा। और सर में रखने का मतलब है मेरे सारे जीवन में परिपूर्णता आए, शुद्धता आए, और आपके आशीर्वाद मेरे मेरे दिमाग को, मेरे सारे जीवन को आच्छादित करे ताकि मैं एक दूसरे तृष्णाओं के पीछे भटकूं मत ऐसे, ये इसका मतलब है। इस तरह हम भक्ति में सेवा करते समय भी कभी कभी हम नेम फेम ग्लोरी ऐसे बोलते हैं, नेम फेम ग्लोरी सेम ओल्ड स्टोरी, बार बार उस चीजों के पीछे पड़ते हैं। इसके कारण हमारे भक्ति आगे बढ़ता नहीं है, गाड़ी बीच बीच में उड़ जाता है, धक्का मारना पड़ता है उसको। ऐसे हमारे मंदिर में एक 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 किसी आदमी आकर डोनेशन दिया था एक टाटा एस्टेट का गाड़ी का, तो मैं बाहर जाकर देखा उसका कूलिंग ग्लास था, इतना लंबा गाड़ी था, साफ था, एकदम सफेद रंग का था। मैंने बोला क्या गाड़ी मिला है हमें, ये तो एरोप्लेन के समान दिखता है, इतना लंबा गाड़ी था वो। मैंने बोला लगता है कि 20 लाख 30 लाख का गाड़ी होगा। तो वो उसका ओनर भी आया था, वो बोला कि नहीं नहीं प्रभु जी ये तो 50,000 का है। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं बैठा मुझे, फिर भी ओनर ने बोला नहीं नहीं प्रभु जी हम आपको डोनेशन देने के लिए आए हैं मंदिर के लिए, आइए आप अंदर बैठिए हम आपको थोड़े दूर लेके जाते हैं। तो अंदर हम बैठ गए, उनको पूछा प्रभु जी गाड़ी तो अच्छा दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना गाड़ी में? कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं प्रभु जी बोल रहे थे। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ट्रैक का स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो ड्रो करता रहता है। तो मैंने उसको पूछा क्या हो गया, बोला कि थोड़ा धक्का मारना पड़ता है शुरुआत में, बस ठीक है। हाँ मैं भी उतर गया, सब लोग हमने धक्का मारा, 4-5 लोग, तो स्टार्ट हो गया वो, ठीक है हम बैठ गए। तो बाहर गया उधर दसुरबा स्कूल के पास आकर रुक गया वो। तो मैंने पूछा क्या प्रभु जी रुक गया अभी? थोड़ा थोड़ा रुक जाता है प्रभु जी बीच में, ठीक है बाहर उधर के वापिस हमें धक्का दी। तो मैंने उसे अभी तो रुकेगा ही नहीं कभी सोचा मैंने, तो जीपीओ के पास आकर रुक गया वो। तो वापस पूछा मैंने क्या प्रभु जी, वो बोले प्रभु क्या है यही समस्या आप प्रभु जी गाड़ी से, दूसरा कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर तो जाता ही है। तो मैं उधर उधर कर आटे पकड़ कर वापस आ गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद आया वो आकर बोला प्रभु जी आपको डोनेशन के लिए देने के लिए हम आए हैं। बोला मैंने बोला डोनेशन नहीं चाहिए आपके पास ही रखो, वो गाड़ी छोड़कर भाग गया वो। तो देख रहे ना गाड़ी बाहर तो इतना फर्स्ट क्लास एरोप्लेन के बराबर दिखता है वो देखने में, लेकिन अंदर इंजन में खराबी है, ठीक नहीं है वो। इस तरह देखे कभी कभी बाहर देखने में एकदम टिप टाप देखते हैं, कुछ भक्त लोग तिलक पहने हैं, कट्टी माला पहने हैं, हाथ में माला, कभी देखने में तो एकदम बढ़िया भक्त है, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, बाहरी दृष्टि से देखकर पता करना पता लगाना बहुत मुश्किल है किसके अंदर कितना अहंकार है, किसके अंदर क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ये समझना बहुत कठिन है। लेकिन जिस तरह गाड़ी बंद पड़ जाता है हमारी भक्ति भी बीच बीच में बंद पड़ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर अनेक तरह के कलमश हैं कलुष हैं, उसको जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए बताते हैं कि निस्वार्थ भावना से हमें सेवा करना चाहिए किसी अपेक्षा ना किए बिना, और हमारे जप भी ध्यान से करना चाहिए, और शास्त्र का पठन डिलीजेंट स्टडी बताते हैं। डिलीजेंट स्टडी का मतलब क्या है, कभी कभी कोई कोई बोलते हैं कि प्रभु जी मैं इतना शास्त्र पढ़ा मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। एक व्यक्ति था, एक भक्त था, तो उसको बहुत बड़ा समस्या था, वो बीबी के साथ बहुत झगड़ा करता था, वो बहुत घर में शांति नहीं था। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कि तुम सुबह मंगल आरती में आ जाओ और साथ में बैठो हम लोग जब करेंगे और भागवत सुनो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरा दिन आया, 4 दिन नहीं आया। तो मैंने बोला आते रहो। तो वो तो बोलता था कि प्रभु जी मैं इतना पढ़ा भागवत हमारा पूरा हो गया, चैतन्य चरितामृत भी पूरा हो गया प्रभु जी, फिर भी क्या प्रभु जी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है और हमारे मन में मन शांत नहीं है, विराज समझा उठो इतना समस्या है, बोला उसने। तो कुछ कुछ लोग तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन दिमाग के अंदर घुसता नहीं है वो, नहीं तो हृदय में परिवर्तन आता नहीं, कारण क्या है? इसलिए बताते हैं डिलीजेंट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, हमारे शास्त्र हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। जीसस ने भी बोला बाइबल में तुम्हें पहाड़ जैसे ज्ञान हो सकता है तुम्हारे दिमाग के मस्तिष्क के अंदर, लेकिन कम से कम राई जैसे उतना तुम्हारे जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो पहाड़ जैसे ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है अगर कोई अपने जीवन में लागू नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत कम से कम राई की मात्रा से कम तुम उसको अपनाओ अपने जीवन में। इसलिए हम शास्त्र पढ़ते समय ऐसे पढ़ना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं क्या उतारूं, क्या परिवर्तन लाओ, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। ये प्रगति क्षण है, प्रगति का लक्षण क्या है, हमारे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। तो अनेक गुण है, जैसे नम्रता, सहिष्णुता, वैष्णव की ओर आदर, जैसे दया, जैसे तितिक्षा, ये सब गुण जो शास्त्र में इतने बड़ा किया गया है, जो भगवान के गुण है और महान भक्तों के भी गुण है, ये इन गुणों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और पढ़कर लेश मात्र से कम अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्न तो करना चाहिए हमें। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर हमारे हृदय को शुद्ध कराएंगे, और शुद्ध होने के बाद स्थैर्यता आएगा हमारे जीवन में। तभी क्या होगा, इन प्यूरिफाइड स्टेज ऑफ स्टेडीनेस द डिवोटीज विल बिकम फ्रीड फ्रॉम मोस्ट ऑफ बैड हैबिट्स एंड अलू फ्रॉम अफिनिटी फॉर द बॉडी एंड फ्री फ्रॉम सेक्स अर्ज। तीन चीज बोलते हैं, अनंत वृत्ति हो गया करके आप कैसे समझ सकते हो, तो बताते हैं कि आपको गलत आदतें दूर, बड़ी सर हैबिट्स, बैड हैबिट्स, गलत आदत बोलते हैं, वो छूट जाते हैं और हम शारीरिक चेतना से हम ऊपर उठ जाते हैं। और खास कर बताते हैं कि काम वासना उसे मुक्ति पाता है व्यक्ति, और इस तरह वो मुक्त हो जाता है। देखिए स्त्री पुरुष का जो हम भेदभाव करते हैं और राग और द्वेष जो हमारे हृदय में होता है, ये भौतिक दृष्टिकोण के कारण है। जो प्रगतिशील भक्त है, भगवान के महान भक्त होता है, वो हर एक शरीर में एक जीव को देखता है, स्त्री पुरुष के शरीर में ही नहीं लेकिन प्राणी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, सब में ऐसे। इसलिए बता देंगे डिवोटीज मस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड बी हॉनेस्ट एनफ टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लेवल ऑफ एडवांसमेंट एंड प्रैक्टिस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक भक्त को अपने हृदय को शोधन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कितना प्रगति किया है, मैं किस स्तर पर हूँ, ये देखना चाहिए ऐसे। तो तीन श्रेणी के लोग बोलते हैं, नॉन डिवोटीज, मिक्स डिवोटीज, नियोफाइट डिवोटीज। देखिए नॉन डिवोटीज का मतलब है अभक्त, उनको क्या पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए, और मिक्स डिवोटीज का मतलब है जो देवी देवता का भी पूजा करते हैं लेकिन जब भगवान के पास आते हैं भगवान से भी वो भौतिक पदार्थों को मांगने वाले हैं, ऐसे हैं, पायस, पुण्यवान, ऐसे भक्तों को मिक्स डिवोटीज बोलते हैं। नियोफाइट डिवोटी का मतलब है कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर उठकर मध्यम स्तर पर जाने वाले व्यक्ति को नियोफाइट बोलते हैं। नियोफाइट, नियोफाइट मतलब कनिष्ठ अधिकारी, अभी इधर से ऊपर उठ रहा है। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब है वो कृष्ण को वो समझता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, उसका पूर्ण विश्वास है, बाकी सब देवता आर सब वृत्ति, वो समझता है इसे, और कृष्ण की कृष्ण से आकर्षित है लेकिन भक्तों की महानता को जानता नहीं है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो नॉन डिवोटीज को क्या करना चाहिए, उनको ऐसे विषयों के बारे में सुनना चाहिए जो उनको कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की दिव्यता और कृष्ण की ऊपर जो श्रद्धा है उसको बढ़ाएगा और उनको जपा करने के स्तर पर लेके आएगा। तीन चीज बोलते हैं, नॉन डिवोटी शुड हियर अबाउट व्हाट, दे शुड हियर दोस टॉपिक्स विच विल इंक्रीज देयर फेथ इन कृष्णा सुप्रीमेसी एंड इट शुड increase their faith that Krishna is not ordinary human being but Krishna is divine, Krishna divya hai, janma karma chane divya, aur unko mala dekar jab karwana chahiye, jaise main kal baitha tha ek Jagannath Agarwal ji, unke teen betiyon ko laaye the saath mein, teenon betiyon ka shaadi ho gaya aur pimpri mein chinchod mein sathi ho gaya hai, to unhone laaya tha, to mere man mein ek vichar aaya unko dekhkar कि बेटा जो होता है उनको माता का गुण आता है बेटे के ऊपर, और बेटी जो होती है उनको पिताजी का गुण आता है। तो ये ऐसे शास्त्र बताते हैं, अभी वैन राजा जो था उसके माता जो है वो मृत्यु के बेटी थी, वो मृत्यु के बेटी होने के कारण उसके अंदर भी दुर्गुण था और माता का दुर्गुण वैन में आया ऐसे, क्योंकि बेटा का माता का गुण बेटे में आता है। तो ये तीन बातों में देखा, मैंने सोचा कि क्योंकि इनके पिताजी बहुत अच्छे हैं जगन्नाथ अग्रवाल जी, उनके अंदर बहुत भक्ति भावना है, बहुत रुचि है और हमेशा वो बोलते हैं कि प्रभु जी अभी करोड़ों रुपया टर्न ओवर होता है हमारा, 50 करोड़ 80 करोड़ ऐसे टर्न ओवर होता हमारे बिजनेस में। मैं जब पुणे में पहले पहले आया था वो बोले कि हम कर्जा लेकर हमने बिजनेस शुरू की पहले, अभी भगवान ने इतना भर के दिया है, हम भगवान को भगवान के मंदिर को हम क्यों नहीं दिया, अभी तक 20 लाख तक दिया उन्होंने, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो एक ओर तो भगवान को देते हैं मंदिर के लिए, लेकिन दूसरी ओर उनका चेतना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं कि तो मेरे दो बेटे हैं इतने हमारे बात मानते हैं, बात सुनते हैं, हमने बचपन से उनको संस्कार दिया, इसके कारण ये दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए, उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई, फिर भी मेरे मेरे बात मेरे ऊपर इतना आदर देते हैं मुझे, और मैं बोलता हूँ उनको 3 लाख दो मंदिर को चेक में साइन करके दे देते हैं वो, ऐसे तो ऐसे बता रहे थे। और अंत में मुझे बता रहे थे कि इस तरह अभी 7 माला करते हैं, अभी अपने आप उन्होंने बोला कि मुझे भागवत पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। मैंने किसी ने बोला मुझे कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, लेकिन भागवत में कृष्ण के बारे में है, तो कृष्ण के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए, कुछ किताब दे सकते हैं क्या, ऐसे अपने आप पूछा उन्होंने। तो मैंने उनको कृष्णा बुक दिया, कल भगवत गीता और कृष्णा बुक दिया मैंने उनको। तो उनके बेटे तीनों आए थे, तो मैंने सोचा हो सकता है कि इनके अंदर भी भक्ति भावना होगा, ऐसे सोचकर मैं कुछ महाभारत से कुछ लीला बोलना शुरू किया, तो माताओं को इतना मालूम आता पहले से, वो सब बोल रहे थे कृष्ण के बारे में बोलना, जब मैंने शुरू किया उनको इतना आकर्षण था कृष्ण के ऊपर, तो मैं महामंत्र के बारे में बोला, उन्होंने तुरंत बोला हरे कृष्ण, महामंत्र के बारे में। अंत में मैं जब बोला तो उन्होंने बोला कि इसलिए हम लोग आए हैं, हमारे पिताजी माला कर रहे हैं, हमको भी करना है, आप एक माला दीजिए, उनको स्टिकर दिया माला दिया, तुरंत शुरू कर लिया उन्होंने तुरंत। जैसे कभी भी घास जो होता है ना वो सूखा होता है, उसमें एक आग की एक चिंगारी भी गिरता है ऐसे तुरंत जलता है, ऐसे कुछ लोग हृदय में ऐसे भक्ति भावना अलड़ छिपी हुई है, उसमें थोड़ा अगर थोड़ा सन मिलता है तो तुरंत जागृत हो जाती है। ऐसे तीनों की तीनों माला ले लिया और बोले कि हम माला रेगुलर करने वाले हैं और हम आएंगे आपके मंदिर में रेगुलर, ऐसे तो जब बताते हैं कि तो हम नॉन डिवोटीज बोल रहा था, नॉन डिवोटी का मतलब ऐसा नहीं कि उनको नॉन डिवोटी जनरली हम किसको बोलते हैं, जिनके अंदर भक्ति भावना अभी तक जागृत हुआ नहीं है उनका नॉन डिवोटी बोलते हैं। कभी कभी कृष्ण को देख कभी ईर्ष्या भी करते हैं, कभी कभी वो लोग कभी कभी वो लोग बोलते हैं आप लोग भक्ति क्यों इतना करते हैं, समाज की सेवा करो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कृष्ण की भक्ति में क्या उसका मतलब है, मालूम नहीं है उनको। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग नाचते हो गाते हो क्या आपका पेट भरेगा, क्या नाम करने से क्या पेट भरेगा क्या, ऐसे पूछते हैं लोग। तो ये लोग इससे हम जान सकते हैं कि ये नॉन डिवोटी है, क्योंकि भगवान बताते हैं योग क्षेम, ये हमारे ये लोग होते हैं ना ये इंश्योरेंस के लोग, वो लोग लगा दिया योग क्षेम महाम योग, ऐसे आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट में भगवान ने जो बोला उसको चोरी कर लिया वो लोगों ने, भगवान का काफी रेट है भगवद गीता में, योग क्षेम महाम योग, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे भक्ति करो, तुम्हारे पास जो कमी है मैं उसका पूर्ति करूंगा, तुम्हारे पास जो है उसका रक्षा करूंगा, भगवान खुद ही बोलते हैं। और ये लोग पूछते हैं कि अरे माला करने से क्या पेट भरेगा क्या, ऐसे बोलते हैं। लेकिन माला अगर करोगे तुम्हारे पास जो भी है उससे तुम संतुष्ट हो जाओगे, इस तरह का संतुष्टि भगवान प्रदान करेंगे, और अगर कमी है तो कमी को भी भगवान पूर्ति करेंगे। और जैसे ये फ्रूट वेंडर जो फल बेच रही थी फल वाली, उसके टोकरी को भगवान ने पैसे से भर दिया है कि नहीं, लेकिन उसे अपेक्षा नहीं थी, वो सिर्फ सेवा भगवान ऐसे ही सेवा की भगवान की, तो भगवान ने उसके उसके भौतिक जीवन की जरूरतों को भी पूर्ति की भगवान ऐसे। तो अभक्त जो होता है उनको पहले पहले कृष्ण की दिव्यता के बारे में बताना चाहिए, जन्म कर्म चले दिव्य हम बोलना चाहिए, कृष्ण के शरीर और हमारे शरीर एक समान नहीं है, हम भौतिक शरीर के अंदर बैठे हुए हैं हम, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है उसके बारे में समझ जाना, और उनको कृष्ण की महानता जो है विश्व रूप दर्शन 11वें अध्याय भगवद गीता इस तरह के चीजों को बताना चाहिए उनको। जैसे भगवान एक विश्व रूप दिखाया दुर्योधन को भी, और अपने मुंह खोलकर सारे ब्रह्मांड को दिखाया अपने पेट के अंदर, ये सब बताना चाहिए उनको ताकि वो समझे कि कृष्ण ने ये गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो इस तरह के भगवान की शक्ति, भगवान कैसे सर्वशक्तिमान बारे में समझना चाहिए, और ऐसा नहीं कि उनको इतना तत्व बोलो इतना तत्व बोलो अंत में हम निष्कर्ष को बोलना नहीं चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, उनको हाथ में माला दे देना चाहिए बस। अगर कोई भी नए व्यक्ति को आप हाथ में माला दे दिया, उसका माला शुरू हो गया, अगर वो शुद्ध भक्त बनेगा तो आपका टिकट भी रिजर्व हो जाएगा भक्ति घाट जाने के लिए। प्रभा जी बोलते हैं ऐसे, कभी कभी हम जिनको भक्ति में रहा है वो हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं बहुत आसानी से। इसलिए किसी को भी प्रचार करते हैं उनको माला देना चाहिए, माला देकर महामंत्र को शुरुआत करवाना चाहिए। अगर कुछ किसी को रहने के लिए तैयार नहीं है तो उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रभु जी, इस बार आपने फिलॉसफी सुन लिया, आगे आइए, और एक बार आइए, दो तीन चार बार आते रहिए, और सुन सुन के उनका सुकृति जब पक्का हो जाएगा तभी आसानी से वो भक्ति में जुड़ेंगे। जैसे कभी कभी ये आम होता है नहीं तो अमरूद होता है, अभी एक पौधे से निकालने के लिए ट्राई कीजिए वो निकलता नहीं है, है ना, ऐसे उसको ऐसे गोल गोल घुमा घुमा कर अंत में ऐसे निकालते हैं, बहुत कठिन तरह से निकालते हैं उसको। इस तरह नए लोगों को के लिए भी अलग अलग चीज बोलना होता है। अगर आप महामंत्र करेंगे तो आपको स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, आपको मन को शांति मिलेगा, आपको आपके जीवन में बहुत कठिनता है सब ठीक हो जाएगा आप जब करो, फिर भी बोलते हैं बाद में ट्राई करेंगे बोलता है, तो उनको घुमा घुमा कर बोलो फिर भी स्वीकार तो नहीं। लेकिन अगर किसी का सुकृति पक्का हो गया, आपने देखा होगा है ना अमृत जो होता है अगर पक गया वो पीला हो जाता है, निकालो ऐसे निकल जाता है तुरंत, है ना, तुरंत ऐसे निकल जाता है। इस तरह मैंने जो बोला है तीन माताएं उनको माला में देने के पहले मेरे हाथ से छीन लिया उन्होंने, बोला कि हम माला चाहिए दीजिए हम शुरू करेंगे भक्ति करने के लिए रेडी तैयार है, वैसे ऐसे कुछ लोग तैयार है, वो भी नॉन डिवोटीज हम सोच रहे हैं लेकिन वो नॉन डिवोटीज नहीं है क्योंकि वो मिक्स्ड डिवोटीज है जो दूसरा कैटेगरी है। और मिक्स्ड डिवोटीज को हम मिलते हैं उनको क्या सिखाना चाहिए, तो नॉन डिवोटीज को ईशोपनिषद से सिखा सकते हैं, भगवद गीता श्रीमद भागवतम महाभारत इन चीजों से उनको सिखा सकते हैं नॉन डिवोटीज को। और मिक्स्ड डिवोटीज को हम क्या सिखा सकते हैं, मिक्स्ड डिवोटीज का मतलब है चतुर्विधा भजन प्रेमा जरा सुन, चार लोग कौन कौन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार लोग हैं ये मिक्स्ड डिवोटीज बोलते हैं। कुछ लोग भक्ति में आते हैं, आप पूछो भक्ति में क्यों जुड़े हो, बोलते हैं कि प्रभु जी पहले हमारा धंधा अच्छे नहीं चल रहा था, अभी अच्छा चल रहा है हमारा धंधा, भक्ति अच्छा लगता है, हमें ये समस्या था वो समस्या था, ऐसे बोलते हैं लोग। तो अलग अलग लोग अलग अलग हेतु के साथ आते हैं, तो मिक्स डिवोटीज हैं उनको हम सिखा सकते हैं, देखो आप भक्ति में जुड़े गए अच्छी तरह, बट यू नो वी हैव टू गिव देम फेथ, द टॉपिक्स दैट प्यूरिफाई देयर फेथ ऑफ सेल्फिश मोटिव्स एंड रिलक्टेंस टू सरेंडर। कुछ लोग जो मिक्स्ड डिवोटीज होते हैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कोर्स टकअप हो जाते हैं वो, जैसे अगर आपको इधर से बंबई जाना हो आप कार में जाते हो, अभी लोनावाला जाते जाते आप देखते हो सीनरी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ठंडा हवा बह रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो कार को थोड़ा बाजू में करके थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा कार के दरवाजा खोल कर थोड़ा सो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो कभी कभी हम ऐसे आराम करते हैं घंटों घंटे चले जाते हैं। इस तरह भक्ति में भी कुछ लोग शुरुआत में आते हैं तकलीफ लात मार कर लात खा कर आते हैं कुछ लोग भक्ति में, क्योंकि बहुत ही दुनिया में कभी लात मिलता है तकलीफ मिलता है उनको, भाग कर आते हैं भक्तों के आश्रय में, भक्त लोग इतने निस्वार्थ होते हैं, प्रेम से बात करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, क्या क्या देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, सब देते हैं, बोलते हैं कि इस तरह का दुनिया देखा नहीं हमने कहीं, इतना अच्छा है भक्तों लोग इतने अच्छे हैं मुझे अच्छा लगता है, आते हैं रेगुलर। लेकिन तीन चार साल हो गया चौला माला तक आ गए, चार नियम पालन कर रहे हैं, काउंसिल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अभी थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि अभी कुछ आगे बढ़ने की उत्साह नहीं है, इच्छा नहीं है, प्रपा की किताबें पढ़ते नहीं, भक्ति में तीव्रता नहीं। आप पूछो उनको प्रभु जी कैसा है भक्ति, गाड़ी चल रहा है प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि नेक्स्ट डिवोटीज का मतलब है जब हमारे मन में तरह तरह की भौतिक इच्छा होते हैं ना, तभी हम स्टकअप हो जाते हैं, क्योंकि लोनावाला में जब अच्छा हवा आ रहा है, मौसम वातावरण अच्छा है, ये हेवनली प्लांट्स के बराबर है, स्वर्गलोक के बराबर है, तो स्वर्गलोक में कोई स्टकअप हो जाता है इसे। तो उनको क्या करना चाहिए, दे हैव टू प्यूरिफाई द सेल्फिश मोटिव्स एंड रिलक्टेंस टू सरेंडर, इसको खत्म करने से उनका श्रद्धा और बढ़ेगा। उनको क्या पढ़ना चाहिए बताते हैं, रीड एंड हियर अबाउट इनकार्नेशंस ऑफ द लॉर्ड, लाइक वामन दे नरसिंह दे ऐसे भगवान भीष्म पितामह के साथ लीला करते हैं इन होम यू हैव फेथ जो इंकार्नेशंस के ऊपर उनको श्रद्धा है थोड़ा बहुत उनके बारे में और ज्यादा पढ़ने से उनका भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं अगेन गो फॉर 5 मोर मिनट्स हाउ मच टाइम आई हैव टू कंक्लूड नाउ अनाउंसमेंट है ओके सो एक्चुअली इसको पूरा करने के लिए शायद और 15 मिनट लग सकता है चलेगा आपको पहले कर देंगे इसको So those who are mixed faith devotees, what they should do? They should hear about the incarnations of the Lord. देखिए भागवत में आप पढ़ेंगे नरसिंहदेव भगवान नरसिंहदेव की जो लीला है अंत में प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं लगभग 50-55 श्लोक है उधर इस तरह के लीलाओं को पढ़ने से क्या होता है हमारे अंदर जो स्वार्थ भावना है वो खत्म हो जाता है जैसे जैसे विद्यार्थियों को हम क्या सिखाते हैं एक टॉपिक मैंने दिया था यू नो पावर पॉइंट ऑन एम्बिशियस ध्रुवा पूरा हाल बढ़ गया तो मैंने विद्यार्थियों को पूछा कि ये प्रवचन के लिए आप लोग क्यों आए थे बोले कि हमको ये शब्द अच्छा लगा एम्बिशियस हम भी बहुत एम्बिशियस है अपने जीवन में एम्बिशियस का मतलब क्या है हिंदी में महत्वाकांक्षा हमारे अंदर में से महत्वाकांक्षा है इसलिए हम आए थे तो मैंने बोला ध्रुव महाराज भी बहुत एम्बिशियस आदमी था इतना एम्बिशियस था कि तो उसको अपने बड़े दादाजी से भी बढ़कर एक लोक चाहिए था उनको राज्य चाहिए था राज्य का लोभ था उनको लेकिन जब भगवान ने उनको ध्रुव लोभ दिया इतने में भगवान को देखकर उनका चित्त शुद्ध हो गया तो हमने एक पावर पॉइंट बनाया था हमने एक 30-35 लेसन था उसमें तो मैंने बोला देखो एम्बिशन के साथ आए उनका एम्बिशन शुद्ध हो गया उनका और भगवान के भक्त बन गए तो इस तरह हमारे ये ध्रुव महाराज एक स्वार्थ भावना के साथ आए थे ईर्ष्या भावना को लेकर आए थे क्योंकि अपने सौतेली माँ सुरुचि की ओर उनका ईर्ष्या था लेकिन उनका ईर्ष्या खत्म हो गया जब ईर्ष्या प्रकट हुआ उनके हृदय से तभी उनकी आंखों आग बबूले राम हरे राम तो आग बबूले हो गए उनके आंखों में आंखें लाल लाल हो गए तो उनके ऊंट कांप रहा था क्रोध से जाते समय लेकिन जंगल में जाने के बाद भगवान के दर्शन होने के बाद वापस उनके आंखों में आंसू आने लगा उनके ऊंट कांप रहे थे अभी भी लेकिन ये प्रेमावेश में आकर पहले क्रोधावेश में आकर अभी प्रेमावेश में आकर ऐसे उनके चित्त में जो भी ईर्ष्या था खत्म हो गया पूर्ण तरीके से और वो अपने सौतेली माँ को भी दंडवत प्रणाम किया वापस लौटने के बाद ऐसे इसलिए हम इन लीलाओं को सुनने के बाद हम कभी कभी भक्तों के साथ भी झगड़ा करते हैं नियोफाइट का मतलब है इज अ न्यू डिवोटी एंड ही फाइट्स फाइट नियोफाइट तो नियोफाइट व्यक्ति को क्या करना चाहिए भगवान के इस तरह के ध्रुव महाराज प्रहलाद चरित ध्रुव चरित नहीं तो वामन देव इस तरह के इंकारेशन के बारे में पढ़ना चाहिए उधर दिए हुए शिक्षणों को पढ़ना चाहिए अपने जीवन में इससे क्या होगा हमारे हृदय में जैसे पृथ्वी महाराज के बारे में पढ़ते हैं पृथ्वी और इंद्र के बीच में जो झगड़ा हुआ था कैसे उन्होंने झगड़ा को मिटाया है तो हम भी भक्तों के आपस में जो झगड़ा होता है कभी कभी क्रोध भावना ईर्ष्या भावना अगर उत्पन्न होता है उसको कैसे हम खत्म करें अगर हम भगवान को संतुष्ट करना है तो हमें इन गलत भावनाओं को छोड़ना ही पड़ेगा हमें तो रिसेंटली मैंने ऐसे एक रिसर्च किया हम प्रतीक्षा के बारे में बोलते हैं टॉलरेंस होना चाहिए तुम्हारे पास टॉलरेट करो क्या टॉलरेट करना है क्यों टॉलरेट करना है ऐसे कोई पूछेगा ना तो हमने निकाला है लगभग 8 कारण है क्यों टॉलरेट करना है क्यों मैं 2-3 चीज बताता हूँ आपको महत्वपूर्ण है इसमें हम जब सही सहन करते कर लेते हैं भक्तों के समूह में आते समय झगड़े के जो वातावरण होता है कभी उसको हम सहन कर लेते हैं कोई हमें इंसल्ट करते हैं हमें निंदा करते हैं उसको सहन कर लेते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान के प्रसन्न के लिए हमें सहन करना चाहिए दूसरा है यम ही न देते अंत क्या श्लोक हो सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते भगवान बताते हैं तुम दुख और सुख में समता रहेगा तुम्हारे हृदय में क्या होगा, स अमृतत्वाय कल्पते, तुम आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त करोगे, ऐसे बताते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा है, हम हमारे अंदर अगर महान गुणों का वर्धन करना चाहते हैं तो सहनशीलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। प्रोवोक करने वाले परिस्थितियां आएंगी हमारे जीवन में जरूर, हर एक व्यक्ति को आता है, उसको पार करने के लिए हमें सहनशीलता चाहिए, अच्छे दिव्य गुणों को जागृत करने के लिए। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है, अगर हम दूसरों को सहन नहीं करेंगे तो गुरु और भगवान हमें नहीं सहन करेंगे। भगवान हमें सहन करते हैं, माफ कर देते हैं, तो इसलिए हमें दूसरों को सहन करना चाहिए, माफ करना चाहिए। चौथा ये कारण है। कितना हो गया? चार हो गया। और पांचवा, ऐसा बोला गया है शास्त्र में, हेट द सिनर, हमें हेट द सिन एंड लव द सिनर। अगर किसी के अंदर कुछ कमी गलती हो गया है उसके ऊपर द्वेष मत करो, लेकिन गलती के ऊपर द्वेष करो। अगर किसी को टीबी हो गया, वो उसको काफी है, खांसी है, हम वो व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं लेकिन टीबी से घृणा करते हैं। बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा दूर रहो, टीबी होने के बाद पास में आकर बैठो, क्योंकि टीबी के साथ पास में आकर बैठोगे तो मुझे भी टीबी आ जाएगा, है ना। इस तरह इसलिए हमें, हम घृणा करते हैं टीबी से, व्यक्ति से नहीं। इस तरह लोगों के अंदर कुछ कमी है, उस कमी दोष के ऊपर तुम घृणा करो, व्यक्ति के ऊपर नहीं, ऐसे बताते हैं। ये एक कारण है। और एक कारण है, अगर हम लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगे, सहा नहीं करेंगे, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो कट जाता है। जैसे ये नदी जाता है, नदी का ये किनारा है, वो दूसरा किनारा है। इस तरह कभी कभी दो लोग होते हैं, उनका अलग अलग मत होता है, मेरा एक मत है और आपका एक मत है, दोनों के बीच में एक बड़ा नदी है, लेकिन वो नदी के ऊपर एक पुल है, इस पुल से हम उधर जा सकते हैं, उस पुल से इधर आ सकते हैं। इस तरह हमने वो भक्त के साथ एक संबंध जोड़ा है जिसके कारण हम उसको सहन कर रहे हैं और वो हमको सहन कर रहे हैं, और दोनों में तरह तरह की कमियां हैं। लेकिन जब हम भक्त को सहन नहीं करेंगे तभी हम इस पुल को तोड़ देते हैं। अगर तोड़ दिया तो संबंध को हम तोड़ दिया। हमें पूछना चाहिए हमारे जीवन में, मुझे भक्तों के साथ संबंध चाहिए, नहीं तो मैं सब भक्तों के साथ संबंध तोड़ना चाहता हूँ। अगर संबंध नहीं तोड़ना चाहते हैं तो हमें हर दूसरे को हमें सहन करने की तैयार रहना चाहिए। कितना हो गया अभी? जी। और एक कारण है, भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, इस दुनिया में तुम आग जरा वो धुआं भी आ जाता है अपने आप। इस दुनिया में चार तरह की त्रुटियां हैं हमारे अंदर, है ना, अपूर्ण इंद्रियां, इस तरह की तरह चीटिंग प्रोपेंसिटी, यू नो इल्यूशन, ये सब। ये हमारे इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हर एक व्यक्ति के अंदर गलती होता ही है जरूर, है? इसलिए हमें जब इस तरह अगर कोई गलती करता है तो हमें समझना चाहिए कि ये तो भौतिक दुनिया है, भगवान को छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गलत नहीं कर सकता है, इसलिए हर दूसरे को हमें सहन करना चाहिए। इसलिए ये समझ कर हरे कृष्ण, आग के साथ साथ धुआं भी हमेशा आता है, सिर्फ आग नहीं मिलता आपको, इसको सहन करना चाहिए इस तरह सोचकर। ये भी एक कारण है। कितना हो गया ये? सात हो गया। और एक कारण है सहन करने के लिए, एक व्यक्ति ने पूछा एक सन्यासी को, महाराज जी मैंने कुछ गलत नहीं किया लेकिन ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे बोला, ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो महाराज बोले, देखो तुमने पूर्व जन्म में किसी और ने अच्छा काम किया लेकिन उसका क्रेडिट तुमने ले लिया, जो काम तुमने नहीं किया उसका फल को तुमने ले लिया पूर्व जन्म में, इसके कारण इस जन्म में तुमको क्या हो रहा है, तुमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन उसके कारण लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। उदाहरण के लिए एक बार हमारे मंदिर में शनिवार को बड़ा बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, फेस्टिवल के बाद सब लोग का प्रसाद, प्रसाद इतना उसमें तेल था, वो पूरे प्लेट में इतना तेल था, तो अगले दिन संडे फिश था, तो संडे फिश के लिए सब प्लेट की जरूरत थी, तो चार तगड़े लोग बैठ गए सफाई करने लगे प्लेट, है सोप वाटर लेकर सफाई करके इतना सफाई किया, एकदम चकाचक सफाई कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो वो लेकर आ रहे थे, आकर रखकर वो प्लेट देने ही वाले थे और एक प्रभु जी थे, वो बोले प्रभु जी हम प्लेट देंगे, आप चले जाओ, आपका सेवा हो गया। तो प्लेट रहते समय किसी ने बोला, प्रभु जी इतना प्लेट को चका चका आपने धोया है, कितना अच्छा आपने रखा, कल तो फिर फीस था, सब तेल पड़े थे उसमें, आपने आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया होगा। तो प्लेट देने वाले बोला हाँ हाँ हमने बहुत परिश्रम किया, थैंक यू, आपने बधाई दी, आपने अप्रिसिएशन किया, थैंक यू बोला। लेकिन जो प्लेट देने वाले थे वो उन्होंने सफाई नहीं किया था, जो प्लेट सफाई करने वाले लोग वो लोग सफाई करके चले गए थे वो लोग। तो कभी कभी हम क्रेडिट लेते हैं वो सेवा के लिए जो हमने नहीं किया है, इसके बदले में क्या होता है आगे जाकर हमने कुछ गलत नहीं किया उसके लिए हमें दंड प्राप्त होता है। इस तरह हमारे जीवन में भी अगर कुछ कुछ परिस्थिति आता है हमें क्या सोचना चाहिए, मैंने कुछ पर पाप कर्म किया हो पूर्व जन्म में, इसके कारण मुझे ये तकलीफ आ रहा है, मुझे इसको सहन कर लो, ऐसे ऐसे हमें सोचना चाहिए। ऐसे मैं ये कलेक्शन क्यों किया, अगर मैं सीखना चाहता हूँ कैसे सहिष्णुता मेरे अंदर लाऊं, तो हमें हमारे मन को कारण देना होता है कि नहीं। मन पूछता है सहिष्णु क्यों बनो, अगर नहीं सहिष्णु नहीं बनूंगा तो क्या होगा। तो इस तरह हम सोचने से, इसलिए बताया जाता है इधर ये मिक्स्ड डिवोटीज जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इस तरह के लीलाओं को पढ़ना चाहिए भगवान के इंकारनेशन के बारे में, उसको पढ़ने से ईर्ष्या क्रोध इत्यादि काम क्रोध मतलब मच्छर इत्यादि को त्याग सकते हैं। और वो भी कृष्ण के बारे में पढ़ सकते हैं, कृष्ण की दिव्यता, कृष्ण के ऐश्वर्य, इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए ज्यादा, ऐसे बताते हैं। और वो बताते हैं राधा रानी के संबंध में जब हम पढ़ते हैं, कीप रेवरेंशियल डिस्टेंस एंड ट्रीट हर एज अ डिवाइन मदर। ये राधा रानी के बारे में जब हम पढ़ते हैं उनको समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि वो जगन माता है, माता समस्त जगताम मधुकैट धारे पक्षो। हरे कृष्ण। पक्षो विहारिणि मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिने शित जन प्रिय दान शीले श्री वेंकटेश दैते तपसु प्रभातम। ऐसे लक्ष्मी के बारे में वर्णन है, माता समस्त जगताम सारे दुनिया के लिए वो माता है। ऐसे बताते हैं वात्सल्यादि गुणोज्वलाम भगवती मंदे जगन मातरम, वो सब सारे जीवों के माता है, इसलिए वात्सल्य गुण है इसके अंदर जीवों की ओर, और भगवान की ओर भक्तमय दिव्य गुणों को जागृत करती है। ऐसे इसलिए हम जब विद्यार्थियों को भी कैंप लेते हैं उसमें ज्यादा राधा रानी के सामने में जब बोलते हैं माता के रूप में उनको प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो समझना बहुत आवश्यक है, बाद में गोपियां जो नाच रही हैं रास नृत्य में वो सब समझ पाएंगे वो है? और हरिनाम को ये मिक्स डिवोटीज क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उनको सीखना चाहिए, 10 अपराधों के बारे में विस्तृत रूप से सीखना चाहिए, क्या है 10 नाम अपराध और उनको कैसे छोड़ना वो सीखना चाहिए। और उनको प्रपद की किताबों को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे वो राइस दाल सब्जी खाते हैं, और बाकी किताबों को चटनी के बराबर खाना चाहिए बाकी किताबें। इसका मतलब है प्रपद किताबें ज्यादा पढ़कर प्रपद के मूड को फॉलो करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। और आगे जाकर बताते हैं नियोफाइट डिवोटीज, नियोफाइट डिवोटीज मीन्स कनिष्ठ से मध्यम स्तर पर ऊपर उठने वाले धीरे धीरे जाने वाले भक्त, उनको क्या करना चाहिए, दे शुड लर्न टू प्रे फॉर रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड हैबिट्स एंड ऑब्स्टेकल्स टू डिवोशन। यह पहली बार यह बात आता है कि उनको सिखाना चाहिए कैसे प्रार्थना करना, कुलशेखर की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, इस तरह की प्रार्थना उनको सीखना चाहिए, गोपियों की प्रार्थना। तो इन प्रार्थनाएं सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, और उनको रुक्मिणी की प्रार्थनाएं, और किस लिए प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मेरे अंदर जो भी दुर्गुण है बुरे आदतें हैं उनसे छूटने के लिए शक्ति दो, और कृपया मुझे आपकी दास बनाओ, आपकी सेवा में जुड़ाओ, मेरे चित्त जल्दी शुद्ध हो जाए, आपकी सेवा का मौका प्रदान करो, भक्तों का संग प्रदान करो, इस तरह की प्रार्थनाएं। और ऑब्स्टेकल्स टू डिवोशन, भक्ति में बाधा डालने वाले जो भी हैं हमें प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान ये अनर्थ मुझे बाधा डाल रहा है, इस बाधा को आप निकालो, इस तरह। इसलिए इधर बताते हैं जो नियोफाइट डिवोटीज, अभी हम सब लोग इधर बैठे हैं स्वरमाला करने वाला और दीक्षित भक्त है. मोस्ट ऑफ अस कम इधर इन मिक्स्ड डिवोटीज और नियोफे डिवोटी कैटेगरी. अगर हम नियोफे कैटेगरी में आते हैं तो हमें वैष्णव गीतों को याद करना चाहिए. वैष्णव गीत में कैसे पेश आना चाहिए भगवान के सामने, कैसे कहा जाता है. एक न बुझनो प्रभु तुम्हारा चरण अशोक भयामृता पूर्ण सर्वख सकल चरिया तुम्हारा रक्षा करने वाले हो आप ही. मैं एक बच्चे के समान हूँ और आप ही मेरे स्वामी हो. हर मैं बड़े दुख पाई आज स्वतंत्र जीवन है. स्वतंत्र जीवन के कारण मैं बहुत दुख पाया जीवन में. अभी अंत में आपके पास आया हूँ, फिर भी मेरे चित्त एकाग्रत होता नहीं आपके पद कमलों में. कृपया मेरे मन को बुद्धि को एकाग्रत करो आपके पद कमलों में. ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं. तो बताते हैं कि नियोफे डिवोटीज को शास्त्रों में दिए हुए प्रार्थनाएं हैं, जैसे भागवत में दिए हुए, और वैष्णव सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बताते हैं. क्योंकि अगर हम भावनाओं को उठाना ऊपर उठाना चाहते हैं, शुद्ध भावना चाहते हैं, तो आचार्यों के कीर्तनों के द्वारा हम कीर्तन मधुर भी है और भावपूर्ण है और मतलब पूर्ण है. इसलिए उनको अपनाने से, हम आते समय जाते समय गाने से तुरंत हम उसके बारे में स्मरण करते हैं और भावना उत्पन्न होता है हृदय में. ये वैदिक भक्ति से राधानल भक्ति की ओर उस दिशा में जाने के लिए एक सीढ़ी बनता है. और बताते हैं कि सेवा भी करना चाहिए. क्या क्या सेवा करना चाहिए? नाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीचिंग. पता है कि प्रभुपाद की किताबों का वितरण करना चाहिए, उससे बहुत कृपा प्राप्त होता है, प्रभुपाद की कृपा. और नाम संकीर्तन से भी चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं हमसे, नाम संकीर्तन से. और प्रचार करके हम दूसरे जीवों को पास में रखते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण बताते हैं कि इस भगवद गीता का प्रचार करो, ऐसे बताते हैं. इसलिए ऐसी सेवाएं करना चाहिए बताते हैं. आई मेडिटेट ऑन द थर्ड श्लोक ऑफ शिक्षाष्टकम. क्या है थर्ड श्लोक? उसमें चार चीज है, कैसे हम तृण से भी हम नम्र बने और सहिष्णु बने और दूसरे वैष्णव को और दूसरे जीवात्माओं को भी हम आदर दें और कभी भी आदर का अपेक्षा ना करें. ये चार चीज उसके ऊपर ये बताते हैं कि बार बार भक्त को ध्यान करना चाहिए. ध्यान कैसे हम कर सकते हैं? हमारे अवस्था में ध्यान करने का मतलब है हम प्रभुपाद जी की, हमारे गुरु की प्रवचनों को इन विषयों के ऊपर सुनना चाहिए. दूसरे वैष्णवों को कैसे, हाउ नॉट टू बिलिटल अदर डिवोटीज बट टू रेस्पेक्ट अदर डिवोटीज. कैसे वैष्णवों को आदर देना, उनको अपराध नहीं करना उनके ऊपर और आदर की अपेक्षा नहीं करना और सहिष्णु कैसे बनना और नम्र बनना, इसके ऊपर लेक्चर सुनना चाहिए. लेक्चर्स सुनकर पॉइंट्स बनाकर नोट्स बनाकर उसे बार बार सुनना भी चाहिए, दूसरों को बताना भी चाहिए और जीवन में उठाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. पर्सनल एप्लीकेशन इस तरह करने से हम इन चीजों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं. और बताते हैं स्टडी द शास्त्र फॉर ओनली वन गोल स्टडीनेस. आगे बताते हैं शास्त्र को एक ही कारण के लिए पढ़ो. क्या है? भक्ति में स्थैर्यता लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए. दूसरे किसी भी हेतु से शास्त्र मत पढ़ो. इसका मतलब है शास्त्र इसलिए मत पढ़ो दिखावा करने के लिए मत पढ़ो शास्त्र. शास्त्र इसलिए मत पढ़ो सिर्फ श्लोकों को याद करके नेट करने के लिए मत पढ़ो. शास्त्र इसलिए मत पढ़ो मनोरंजन के लिए मत पढ़ो, ऐसे बताते हैं. शास्त्र इसलिए पढ़ो ताकि भक्ति में स्थैर्यता को लाने के लिए, ऐसे बताते हैं. तो हम आज के प्रवचन को इधर विराम देना चाहते हैं। कभी दूसरे किसी रविवार के सत्र में हम सहजम के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आज प्रवचन में हम हृदय में लोक भावना को कैसे हम जागृत कर सकते हैं उसके बारे में हमने बोला। और लोग ये कृष्ण के संबंध में लोग जो है उसके गलत धारणाएं क्या क्या है उसके संबंध में हम दूसरे क्लास में बोलेंगे और प्रभुपाद की लीला के द्वारा हम समझाएंगे, ताकि हम गलत गलत फहमी में ना फंसे एक ओर से, और दूसरी ओर से हमारे हृदय में कृष्ण की ओर लोभ जागृत हो, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि हम भक्ति में अनेक लोग आप में से दीक्षा भी लिए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, अनर्थों से हमें निवृत्ति पाकर हम निष्ठा पर आना चाहते हैं, और निष्ठा के बाद ही रुचि जागृत होता है। हालांकि मेरे पास दोनों किताब थे आज हाथ में, दोनों लाए थे मैंने। आज हमने बोलने वाला था कृष्ण के जन्म के संबंध में, इतने मधुर विश्वाचरित ठाकुर के कमेंट्री था, तो मेरे मन में एक तरह का द्वंद्व हो रहा था, क्या ये बोलूं नहीं तो ये बोलूं, तो दोनों को लाया था। अभी ये प्रश्न बोल दिया तो कृष्ण के जन्म के बारे में कहीं और हम बताएंगे। तंत्रा श्रीमद भागवतम की कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्री लखोपाल की। थैंक यू वेरी मच।
You can tell this. You can tell this. You can tell this. You can tell this.